ಯ ನಮ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮ ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮ ಹಾ ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮ ಮದನ ಮೋಹನ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಸೀತಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಸೀತಾ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ದಾಸ ರಘುನಾಥ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ದಾಸ ರಘುನಾಥ भागवत गीता हरे राम 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 हरे हरे। बिहार श्री गौर हरे सती माता प्राण धन गौर हरे सती माता प्राण धन गौर हरे सती माता प्राण धन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की
हरे कृष्णा। तो थोड़ा आगे आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें ताकि पीछे से आने वाले भक्त वृंद भी स्थान पर बैठ सके। तो हम धन्यवाद देंगे शुभ विलास गोविंद प्रभु का कि उन्होंने आज यहाँ पर निमंत्रण दिया और यहाँ पर कथा के लिए बोला है। तो कथाओं से मुझे अधिक प्रेम है भगवान कृष्ण की। तो हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के निमंत्रण को हम स्वीकार कर ना बोल नहीं सके कि हम नहीं आ सकते हैं, तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में यहाँ पर आना था। प्रभु जी ने तो कार्तिक में इनवाइट किया था, बट कार्तिक चले जाने पर हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी आज यहाँ पर विशेष ड्रामा दिखाएंगे प्रभु जी अपना एक सुंदर गृहस्थ आश्रम के ऊपर, और फिर हम गृहस्थ आश्रम सदगृहस्थ कैसा होना चाहिए ये भागवत स्कंद पुराण अनेकों पुराणों से दृष्टांत लेते हुए हम चर्चा करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में हरे कृष्ण। हाँ ठीक है हरे कृष्ण।
जो जो बातें रह गई हैं सुनी या नहीं सुनी सारी बोल लीजिए उसके बाद।
हरे कृष्णा
सबके लिए प्रसाद है प्लीज। हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु और उनकी माधु जी उनकी धर्मपत्नी और उनकी दोनों सुपुत्र यहाँ पर आए और हम सबको अपना संग देने के लिए कृष्ण कथा सुनाने के लिए और अपने उदाहरण से एक ग्रस्त जीवन क्या होता है उसको समझाने के लिए हम आए। तो इसलिए जोर से पूरे जोर से प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि प्रभु बहुत ही वरिष्ठ भक्त है और अकेडमिकली भी बहुत क्वालिफाइड है। प्रभु जी का डिग्री लंदन से और बहुत जगह से प्रभु जी ने डिग्री प्राप्त किया है और बहुत जगह मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और उसके बाद प्रभु जी ने पूरा अपना जीवन श्री प्रभुपाद जी के इस्कॉन संस्था के लिए पूरा फुल टाइम प्रभु जी सेवा कर रहे हैं इस्कॉन द्वारका में। प्रभु जी फरीदाबाद में ही रहते हैं। बहुत से डिवोटीज आपने कभी ना कभी प्रभु जी का प्रवचन कृष्ण कथा सुना ही होगा और वो नहीं सुना तो आज आपके भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं।
हरि बोल।
तो थैंक यू सो मच प्रभु जी।
थैंक यू टू यू
पूरी फैमिली के लिए कि आप सब आए और हम सबका अपना संग प्रदान कर रहे
हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू टू शोभनास गोविंद। हरे कृष्णा। तो आपसे बातें करने आए हैं या कथा श्रवण करने आए हैं? पक्का? तो आपके पास में मोबाइल दिया है भगवान ने, जिसे कलयुग की पूतना कहा गया है, जो हमारे कृष्ण को मारने की इच्छा से आई है, तो उसको थोड़ा स्विच ऑफ कर दें और अपने बच्चों को भी बैठाएं और उनको ध्यान से कथा श्रवण करवाएं। ठीक है, तो हमारी वाइफ है यहाँ पर गायत्री करुणा देवीदासी और बड़ा बेटा उसका नाम है आदि कृष्णदास और ये छोटा बेटा इसका नाम है गौर कृष्णदास। तो इन तीनों का भी बहुत बहुत सहयोग है हमारे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ हमेशा कि इनके कारण मैं प्रचार करता हूँ रात दिन, क्योंकि ये लोग घर देखते हैं अपना। तो अभी हम लोग आज के सद्ग्रस्त के ऊपर थोड़ा कथा चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले मंगलाचरण करते हैं, साथ में बोलिए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकं वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्णा। तो एक श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर भजन है जो कि गृहस्थ जीवन के ऊपर ही बताया गया, तो हम उसकी एक एक लाइन लेंगे और साथ में आप लोग भी गाएंगे और फिर गाते गाते हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथ में आप बोल सकते हैं, बड़ा सिंपल है।
आमार बलिते प्रभु आर किछु नाई,
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 तुमि आमार माता पिता बंधु भाई,
तुमि आमार माता पिता बंधु भाई,
तुमि अमर माता पिता बंधु एव भाई,
तुम्हें अमर माता पिता बंधु भाई।
तो गृहस्थ जीवन, शास्त्र पूछते हैं कि भक्तों ने पूछा गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है, तो क्या बोलते हैं आप, गृहस्थ जीवन क्या होना चाहिए, क्या है गृहस्थ, प्रश्न उठता है गृहस्थ जीवन है क्या। तो गृहस्थ जीवन के लिए शास्त्रों में कहा गया गृहस्थ आश्रम है। कुछ लोग ग्रह मेदी संसार को भी ग्रस्त मानते हैं, सदग्रस्त और ग्रस्त, और एक ग्रस्त है, त्रस्त है, चारों कोने पस्त है, उस ग्रस्त से ग्रस्त आश्रम अलग है। आश्रम का मतलब है जिसके घर से निकले, जैसे अभी आप शिव विलास गोविंदपुर के घर के पास आए तो आपको एड्रेस पूछना नहीं है, कैसे आ गए, कीर्तन की आवाज सुन के, बोले इस घर में कीर्तन है, यही है कार्यक्रम। जिस घर से कीर्तन की आवाज आती हो वही घर आश्रम है। जैसे आप कभी हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, तो क्या होता है, हम उस आश्रम में रुकते हैं जहां पर रहने के लिए कमरा हो लेकिन नीचे एक मंदिर हो और कीर्तन प्रसाद यहां पर अवेलेबल हो। तो जहां कीर्तन की आवाज आती हो, जहां प्रसाद खाने को मिलता हो, वो घर ही ग्रस्त आश्रम है, वरना वो ग्रह मेधी संसार है। मेधी मतलब जहां सारे कार्य अपने इंद्र तृप्ति के लिए किए जा रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे उस घर से कीर्तन की ध्वनि नहीं आएगी, आवाजें आएंगी। कैसी आवाजें आएंगी, बेलन खींच के मारूंगी, कौन सा दिन था तुमसे शादी हो गई, ऐसे भी घरों से आवाजें आती हैं। और पुलिस केस भी हो रहे हैं आजकल, तो अब भी देखते हैं गली के बाहर लोग खड़े हुए हैं, पुलिस आ रही जा रही है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति पहले कम उम्र में विवाह करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 13-14 साल की उम्र में विवाह होते थे, तो उस समय कन्या दान होता था। अभी तो कन्या रहती नहीं है, अभी तो महिला दान होता है, महिला हो जाती है तब वो महिला दान होता है। तो माता पिता भी सोचते हैं कि हमने अपनी महिला का दान कर दिया, लेकिन वो करियर ओरिएंटेड होने के नाते इतने सारे ख्वाब पहले ही बना चुकी होती है कि अभी उसको है ना, हर व्यक्ति के अंदर त्रुटियां नजर आती हैं, आदत पड़ गई है ना, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुमसे कैंसिल, उससे कैंसिल, ये कुंडली वो कुंडली। तो वो घर सही मायने में ग्रस्त है जहां पर दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहते हो। ऐसा स्कंद पुराण के काशी खंड के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कहा गया है यत्र तुष्यन्ते भरतरा स्त्री स्त्रिया भरतरा चातुष्यति तत्र वैशामनि कल्याणं संपदते पदे पदे। यत्र तुष्यन्ति भरतराम स्त्री, जहां पर अपने पति से स्त्री संतुष्ट रहती है। यत्र तुष्यन्ति भरतरा स्त्री, भरता मतलब होता है कौन, पति है ना। एक तो आलू का भरता बनाते हैं, एक वो बैगन का भरता है, वैसे तो आदमी भी भरता ही बन गया होता है गृहस्थ जीवन में, लेकिन फिर भी सही मायने में भरता, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। गोपीर भरतयोर, गोपियों के जो भरता है, भरता मतलब उनकी इच्छाएं पूरी करने वाले, उनको पालन पोषण करने वाले, उनको आनंद देने वाले, उनको अपने रूप माधुरी से आनंद देने वाले, वो कहलाते हैं कौन, भरता। तो व्यक्ति जो पति है उसका एक नाम है भरता, कलयुग में वो बन गया बैगन का भरता, लेकिन सही मायने में भरता जो अपनी पत्नी को संतुष्ट करे। कर्दम मुनि की पत्नी थी देवहूति माता। अपने पत्नी के लिए जब उनको पता चला कि मेरी पत्नी मुझसे विवाह करी है और मेरे को उनको संतुष्ट करना है, उनके लिए मन की गति से चलने वाला विमान बना दिए। कई बार लोग ना गृहस्थ आश्रम में वैरागी बन जाते हैं, तो वैरागी बनना है लेकिन युक्त वैरागी बनना है। कई प्रकार के वैरागी हैं, जैसे फाल्गु वैरागी हैं, संन्यास वैरागी हैं, शमशान वैरागी हैं, कई प्रकार के वैरागी हैं। शमशान वैरागी कैसा होता है, थोड़ी देर के लिए शमशान में जाएगा, उसका वैराग उत्पन्न हो जाएगा, ओहो क्या लेके आए थे जीवन में, देखो जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है ना भजन करेंगे। ये शमशान में उत्पन्न वैराग है, लेकिन जैसे ही घर वापिस आएंगे, वापिस वैसे बैक टू द पवेलियन, अरे अरे मेरा तो किराया बाकी है, बिल भरना है, ये सब काम, फिर भजन भूल गया व्यक्ति, शमशान वैराग्य। कुछ होते हैं आवेश वैराग्य, आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ में, जिस दिन से तुम्हारे साथ आया उसी दिन से सारा गड़बड़ हो गया है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ कर, गए और मोड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा, याद आएगा आलू के पराठे कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा दही बड़े बना करके, है मेरा तो जीवन ही बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा है घर चलूं। घर आएगा पत्नी कहेगी आ गए आप तो बड़े आवेश में गए थे, कहा नहीं नहीं वो मैं तुम्हारी शक्ल देख के नहीं आया हूं, मुझे बच्चों की याद आ गई। तो ये आवेश वैराग है, क्रोध आता है उसमें व्यक्ति घर छोड़कर त्यागता है, वैरागी बनता है, ये भी सही नहीं है। फाल्गु वैरागी है, फाल्गु वैरागी मतलब गया में एक नदी है जिसका नाम है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी कैसी है, ऊपर से तो मिट्टी है लेकिन अंदर से जल है। आप सोचेंगे कि ये नदी है, गया बिहार में आप जाएं तो वहां पर फाल्गु नदी है, पुल भी बने हैं, नदी भी है, रिवर बेड भी है, जैसे आप उसमें चलने की कोशिश करेंगे, बच्चे क्रिकेट खेलने की कोशिश करें, विकेट गाड़ने से पहले विकेट डुक अंदर, ऐसे आप पैर रखेंगे अंदर, तो ये कैसा है, ऊपर से लग रहा है रेगिस्तान, अंदर है जल। फाल्गु वैरागी ऐसे ही है, ऊपर से घर बार छोड़ करके हिमालय, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, पत्नी परिवार छोड़कर हरिद्वार जाके बैठ जाएगा, कमंडल ले लेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, बड़े बाल कर लेगा। यही संसार में अधिकतर लोगों को लगता है साधु का मतलब यही है, जिसके बड़े बाल हैं, जिसके नारंगी कपड़े हैं, या फिर जो हरिद्वार आदि देशों में ऋषिकेश उत्तराखंड में बैठा है पहाड़ों में, वो साधु है। तो ये साधु नहीं है, फाल्गु वैरागी है, क्योंकि इसके मन में अंदर बहुत सारा जल बाकी है, काम का, क्रोध का, लोभ का, लालच का। आप देखिए कई बार होता है लोग घर त्याग करके जंगल चले जाते हैं, और जंगल में जाकर के वहीं की किसी भील और स्त्री से शादी कर लेते हैं। भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, सब कुछ त्याग करके जंगल में गए, लेकिन वहां जाकर एक हिरण से आसक्त होकर के उन्हें वापस हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ा। तो इसका मतलब जब तक आसक्ति है हमारे संसार में, ये आसक्ति है अटैचमेंट, तब तक हमारा वैराग्य नकली है जितना भी हम दिखाएं। इसलिए शास्त्र सिद्धांत कहते हैं युक्त वैराग्य से उच्चते, युक्त वैराग्य होना चाहिए। युक्त वैराग मतलब घर के काम भी करेंगे और भगवान का नाम भी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे।
तो यत्र तुष्यन्ति भरतराम स्त्री, जहां पर पत्नी पति से संतुष्ट हो, और स्त्रियां भरताम च तुष्यति, और वहां पत्नी पति से, पति पत्नी से, एक दूसरे से दोनों संतुष्ट हो, वही सही मायने में गृहस्थ जीवन है। संतुष्ट नहीं है, रुष्ट है, तो वो कोई फायदा नहीं है। कोप भवन में रहते हैं, कोप भवन जानते हैं, कैकेयी माता को जब क्रोध आता था तो पहले एक भवन बनाए जाते थे कोप भवन, उसमें वो अपना कोप, अपना क्रोध व्यक्त करती थी। अगर महारानी कोप भवन में है, समझ लीजिए आज कुछ टेंशन की बात है। तो दशरथ महाराज से जब कैकेयी ने भगवान राम का वैराग्य मांगा, संन्यास मांगा, वनवास मांगा, तो वो कोप भवन में थी। तो आप समझिए कोप भवन मतलब जहां गुस्सा प्रकट करते हैं। आजकल तो जो बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम, वो कोप भवन ही है, वहां पर हमेशा क्रोध में रहती हैं, कभी भी प्रेम नहीं है। ये प्रेम आएगा कैसे? प्रेम आता है जब हम गृहस्थ जीवन के कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो सीखना चाहते हैं कि नहीं? देखिए गृहस्थ जीवन में सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया, मात्राम पित्राम वृद्धो ग्रस्तो यो न पोष्यते सा पुत्रा नरकं याति वेदानां प्रपुण्याद् ध्रुवम्। ये ध्रुवम बात है, ये सत्य बात है मात्राम पित्राम वृद्धो, जो माता पिता वृद्ध हो गए हैं, गृहस्थो यो न पोषति, अगर गृहस्थ व्यक्ति अपने माता पिता का पोषण नहीं करता, सा पुत्रा नरकाम याति, उस व्यक्ति को नरक जाना ही पड़ेगा। लोग होते हैं ना आजकल ओल्ड एज होम में अपने माता पिता को भेजते हैं, या फिर चार बच्चे हैं, यही टेंशन रहती है कौन रखेगा माँ बाप को। कितनी सारी फिल्में बन रही हैं उनके ऊपर, प्रताड़ित लोग हैं बुजुर्ग। ऐसे एक बार एक ओल्ड एज होम में एक बच्चे की माँ ने उसको फोन किया, बेटा मुझे 27 साल हो गए इस वृद्ध आश्रम में रहते रहते, क्या तुम एक बार मुझसे मिलने नहीं आओगे, अभी मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटा बोला हाँ अभी तो बनता है, अंतिम समय में तो जाना चाहिए। अंतिम समय में मिलने गया तो क्या देखता है कि ना माँ बस प्राण छोड़ने वाली है, पर उसकी एक इच्छा है। कहा माँ तेरी कोई अंतिम इच्छा? कहा एक इच्छा है, क्या? एसी लगवा दो यहाँ पर, वृद्ध आश्रम में एसी लगवा दो। बोला माँ अभी तो तुम अंतिम प्राण चल रहे हैं, अभी एसी का क्या फायदा होगा? बोला बेटा मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए पूछ रही हूँ। बोला क्यों? बोला जैसा तूने किया वैसा तेरे साथ भी तो होगा, जब तू आएगा तो मैं माँ होने के नाते चाहती हूँ पहले से यहाँ एयर कंडीशन लगा हो, ठंडक हो, है ना, ऐसा होगा, ऐसा बताया गया। मात्राम पित्राम वृद्धो ग्रस्तो यो न पोषति, जो ग्रस्त होकर के अपने माता पिता का पोषण नहीं करता, सा पुत्रो नरकाम याति, वो नरक में जाएगा, है ना। पुत्र नामक शब्द का अर्थ ही है, जैसे आजकल किसी से पूछो कौन है ये आपके, बोले ये हमारे बेटे। बेटे शब्द का मतलब है जो माता पिता के मृत्यु के बाद बंटवारा करता है ना, पहले बोलता है बाद में लाश जलेगी, बाद में होगा अंतिम संस्कार, पहले होगा बंटवारा, लाओ भाई हमारा लाओ लाओ। और हुआ है कई बार, मैं जाता हूँ कितने सारे लोगों के डेथ प्रोग्राम्स में, रोज हम जाते हैं कथा कीर्तन करने, वहां देखते हैं लड़ाइयां चल रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा अंतिम संस्कार के ऊपर, बोला वो बाद में होगी, अंतिम हो गया तो फिर सब अपने अपने चले जाएंगे। तो इसलिए पहले शेयर प्रॉपर्टी शेयरिंग दे दो, बेटा ये बेटा है। दूसरा होता है लड़का, वो तो फिर पुलिस केस कर देता है, पुलिस स्टेशन की पुलिस आ जाती है कि ना अंतिम संस्कार में कहीं जिस चिता की लकड़ी से पिता को चिता दी जा रही है वही लकड़ी से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, महाभारत प्रारंभ हो जाता है। ये लड़के हैं, लड़कर के अपनी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, बहनों से लड़ रहे हैं, भाइयों में आपस में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, पता ही कोई जीवन है। इसीलिए शब्द आया पुत्र, पुत्र नामक मतलब है, जो भागवतम के पांचवें स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, उसमें से एक नरक है जिसका नाम है पू नरक। पू नरक त्रायते इति पुत्र, जो पुत्र अपने माता पिता को नरक में जाने से रोक ले उसे पुत्र कहा गया। तो कौन होगा? जो अपने जीते जी माता पिता को कथा कीर्तन यात्रा धाम यात्रा इनमें लगाए वही सदग्रस्त है। ये नहीं मैं घूमूंगा अपना मजिया मजे से, तुम पड़े रहो यहाँ पर, ये ठीक नहीं है, है ना। देखा गया अंतिम समय में माता पिता की सेवा नहीं हो पाती है, अंतिम क्रियाएं कर देते हैं अड़ोसी पड़ोसी लोग, माता पिता के पास बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, दूर दराज होते हैं। तो बहुत जरूरी है मात्राम पित्राम वृद्धो, इसको हमें वृद्ध जो है माता पिता उनका पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तभी कर सकता है व्यक्ति जब उसके केंद्र बिंदु हो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ऐसा ऑल्टर होना चाहिए ग्रस्त जीवन में, बड़ा सा घर के अंदर विग्रह हो ताकि हमारा फोकस केंद्र बिंदु रहे कृष्ण, है ना। हमारे घर में बड़े बड़े ड्राइंग रूम है, बड़े बड़े रूम है, पर कृष्ण के लिए कितनी जगह है? छोटा सा एक लकड़ी का एक नंबर से खरीद के टांग देते हैं हमें, और उसमें एक छोटा सा लाइट लगा देते हैं बल्ब, और उनको खाने के लिए क्या देते हैं, वो चिरौंजी दाना डाल देते हैं, किशमिश रख देते हैं, खुद खाते हैं मलाई कोफ्ते बटर पनीर छोले भटूरे, और उनके लिए इतना सा। तो कुछ भी खाएं पहले कृष्ण को दें, सब कुछ उनका है, तब फिर हम भजन भोजन करें तब फिर भजन होता है। इसलिए पहला हमने चीज सीखी है क्या है, मैं बाद में पूछूंगा। एक तो पति पत्नी संतुष्ट होने चाहिए, गृहस्थ जीवन का पहला नियम क्या है बोलिए। हाँ सबके बहुत धीरे धीरे बोल रहे लग रहा है नहीं संतुष्ट, जोर से बोलो, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से
संतुष्ट होने चाहिए।
दूसरा क्या है? माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र होना चाहिए, जो माता पिता की सेवा करे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए पत्नी आकर बोले या तो ये घर में ये रहेंगी या तो मैं रहूंगी, बोला है ठीक है तुम ही रहो माँ आप चली जाओ, ऐसे होता अक्सर, लेकिन ये ठीक नहीं है। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं है वो स्त्री अगर अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती तो वो भी नरकवासी होगी, चाहे कितने भी पिताड़ना हो। आपने मन में प्रश्न आएगा अगर सास अच्छी हो तो पूजेंगे, लेकिन अच्छी ना हो तो ये मन आएगा। अच्छी ना भी हो, शास्त्र कहते हैं पति अच्छा ना भी हो फिर भी पत्नी का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करनी, ये पत्नी का धर्म है। हाँ, भीष्म पितामह ने महाभारत में जब अंतिम धर्म का ज्ञान दिया, स्त्री धर्म, राज धर्म, कई प्रकार के धर्म बताए, तो उसमें स्त्री धर्म बताया। उन्होंने कहा स्त्री का कर्तव्य है कि अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा करना। वो वाले माता पिता नहीं, वहां से तो आ गई अभी डोली में बैठ करके, है ना। एक बार महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को घर से निकाल दिया था। जब कस्तूरबा गांधी को निकाल दिया और रात में बारिश हो रही थी, मोहनदास करमचंद गांधी ने निकाल दिया उनको। सोचिए महात्मा जी ने, बोलते हैं वो भी ऐसा कर्म किए, और जब निकाल दिया, होता है कभी कभी क्रोध आता है, पत्नी पूरी रात गेट के बाहर बैठी रही। जब प्रातकालीन वेला में श्री महात्मा गांधी ने खोला तो क्या देखते, कस्तूरबा गांधी बाहर बैठी। कहा तुम गई नहीं अभी तक? कहा यही तो मेरा घर है। आपने कहा अपने घर चली जा, अपने घर तो बैठी हो। कहा फिर तुम अपने मायके नहीं गई? कहा नहीं नहीं, वो तो जिस दिन डोली में बैठ के आई थी, प्रण किया था, अब जब अर्थी में ही जाऊंगी, वह ये घर मेरा ही रहने वाला। ऐसा नहीं होता है जैसे मिस्ड कॉल मार दिया मायके वाले ने, तुरंत छट भाग गए अपने घर। वो मिस्ड कॉल आया मम्मी का, मिस्ड कॉल आया मम्मी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जिस घर में मायके की तरफ माताएं भागती हैं, वही माताएं बाद में मुझे मार भी सकती हैं इस बात को सुन के, लेकिन जहां माताएं का ज्यादा संबंध है अपने मायके से, वहां वहां क्या होगा, उत्पात होने वाला है। इसका उदाहरण है शिवजी। शिवजी की पत्नी कौन है? पार्वती, सती माता थी उनसे पहले। सती माता के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ किया था और उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन एक को नहीं बुलाया। किसको? शिवजी। दामाद को ही नहीं बुलाया। दामाद की इज्जत भगवान के समान होनी चाहिए थी, और वो तो शिव तो वैसे ही पूजनीय वैष्णव थे, वहां भगवान के पार्षद हैं, उनको नहीं बुलाया। देखती थी सती की ऊपर से सभी विमान में बैठ करके जा रहे हैं, सब जा रहे हैं अपने अपने विमान में बैठकर, इंद्र, वरुण, चंद्र। देखते बोलती थी कहां जा रहे हैं? कहा आप ही के घर, आप नहीं आई? कहा बस मैं क्या बताऊं, इनविटेशन नहीं आया, इंतजार कर रही हूं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो कहती है सती माता, देखिए शिव जी, बेटी के घर से इनविटेशन ना भी आए तो बेटी का कर्तव्य है कि वो जाए, जाए, मुझे जाने दीजिए। तो शिव जी कहते ना, अब ये घर तुम्हारा है, अब तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो मुझे बुलाते हैं तो हमारा जाना सही है, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी। कहा देखो जाओगी तो एक बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट होगा। फिर भी सती माता गई। गई तो क्या हुआ, वहां जाकर देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। सती माता को क्रोध आ गया। अब वहां जाकर के पत्नी को एहसास होता है ना, जाते वक्त नहीं सोचती, उस समय माता पिता का प्रेम होता है, लेकिन वहां जाकर के पति का वियोग सताता, अरे ये भी आ जाते काश साथ में। तो पत्नी ने जब देखा कि उनके पति की इज्जत नहीं है, उनके लिए स्थान भी नहीं है, क्रोध में आके कहा पिताजी आपका यज्ञ कुंड नष्ट कर दूंगी, भस्म हो जाऊंगी। कूद, जब कूद गई तो क्या हो गया, सारा यज्ञ नष्ट हो गया, सब लोगों में हाहाकार मच गया। शिव जी भी क्रोध में आ गए, तांडव करने लग गए, और पहुंच गए अपने बालों से जटा से निकाल कर इसे जमीन में फेंका, कृत्या उत्पन्न हो गया, और उसने क्या कर दिया, सबका नाश करना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि उसने क्या भी कर दिया, रुद्र रूप ने इवन जो दक्ष प्रजापति ससुर थे उनकी भी गर्दन काट दी। अभी तो यहाँ पर पिताजी जो है ना, पतिदेव रुद्र रूप लिए हुए हैं, रुद्र है, रौद्र रूप लिए हैं, ससुर जी की गर्दन कट गई है, और जो पत्नी जो है वो यज्ञ कुंड में कूद गई। सोचिए कैसा माहौल हो गया होगा। ये कहाँ हुई थी घटना, बता सकते हैं? इंडिया के कौन से कोने में हुई थी? भारत में। हाँ, कनखल में, बिल्कुल सही। हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, वहां पर दक्ष का एक स्थान है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड आज भी है, जिस यज्ञ कुंड में कूद गई थी सती माता। तब भगवान विष्णु जो थे उनको बुलाया गया, सब ने प्रार्थना करी देवी देवताओं ने। जब देवी देवता सब बिगाड़ लेते हैं तो उनके पास उपासनी एक ही भगवान है जो सब कुछ सुधार सकते, कौन? कृष्णा, विष्णु। उन्हीं को पुकारा गया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। पुकारा गया तो वहां पर आ गए विष्णु भगवान। आए और उन्होंने देखा शिव जी रौद्र रूप लिए हैं, सती को लेकर गोदी में जल रही हैं, तेज अग्नि निकल रही है उनके शरीर से, ताप निकल रहा है, ऊंची ऊंची लपटें निकल रही है, और वो धगत 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 डांस कर रहे हैं। देख करके सब देवी देवता घबरा रहे हैं, आज तो प्रलय आ जाएगी। तुरंत विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा। कृष्ण सुदर्शन छोड़ते ही सती माता को 9 भागों में काट दिया। और उन्हीं के 9 स्थान अलग अलग स्थान पर गिरे भारत में, जहां 9 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उनको रोकना पड़ा, उनका इतना क्रोध था उनके अंदर कि प्रलय आ जाते। जब वो नष्ट हो गई तो फिर वो जाकर तपस्या करने लग गए, क्योंकि धीर है। शास्त्र में कहा गया धीरस तत्र ना मोहयति, उसको कोई मोह नहीं है। जैसी वो समाप्त हो गई फिर बैठ गए, ध्यान करने लगे। क्या ध्यान कर रहे हैं? शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? हाँ, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। बोलते हैं पार्वती माता को कृष्ण, ये शिव जी बोलते हैं पार्वती माता को कि जितनी भी आराधना है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी भी आराधना है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी, हे देवी इससे भी बढ़कर क्या है? तदिया नाम समर्चनम, भगवान से जुड़ी हुई तदीय वस्तुओं का स्मरण करना, उनके नाम का, उनके धाम का, उनके भक्तों का, उनके प्रसाद का। तदीय मतलब जो भगवान से जुड़ी वस्तु है। तो ये बताते हैं शिव जी, इसलिए ध्यान करने बैठ गए भगवान का और तुरंत धीर बन गए। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि पत्नी का घर कौन सा है? जो पति का घर, उसी घर को भक्तिमय बनाने का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? देखिए, स्त्री एक बहुत बड़ा अंग है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ का मतलब ही है पति पत्नी, है ना। जहां पर पत्नी अगर कुंठित होगी तो वहां पर परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। और पत्नी को अपने पति को समझाना भी चाहिए। द्रौपदी ने समझाया नहीं, उल्टा बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा, उससे क्या हो गया? महाभारत, एक लाइन से महाभारत हो गया। और माताएं सोचती कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होगा। होता है, एक एक लाइन वज्र लेप के समान लगती है। पुरुष बोले ना बोले उसके हृदय में इतनी लाइनें खिंच जाती है ना वो भाषा से। इसलिए स्त्री का कर्तव्य, उसका धन है लज्जा, चुप, शांत, सेवा करना। लक्ष्मी जी को सब पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी कौन से स्थान पर रहती है? विष्णु के चरणों में रहती है। और एक नहीं, सहस्त्र लक्ष्मी संभ्रवानम, भगवान की सहस्त्र लक्ष्मी, हजार लक्ष्मी सेवा कर रही, पैर दबा रही हैं। है कोई माता पैर दबाती है पति के? दबाती होंगी, वो तो हाथ कड़ा हो जाएगा, लेकिन दबाती कितना। बहुत स्थिति गंभीर है इस समय ना, कलयुग में ऐसे ऐसे हो रहा है। बता रहे थे जैसे एक माता ने अपने पति को बोला, बोलती है मेरे लिए चप्पल लेके आओ। अभी पति बोलता है कि देखो भाई, मैं ऑफिस के काम भी करता हूँ और मुझे बहुत टेंशन भी रहती है, फिर बाजार जाना, चप्पल लाना बड़ा मुश्किल। लाते हो कि नहीं लाते हो? हाँ हाँ ठीक है ला। हाँ बोल, हाथ जोड़ता तो लाऊंगा। लेकिन जब दुकान पे पहुंचा तो नंबर लाना भूल गया। नंबर क्या था? 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर जो भी था। तो भूल गया, तो घर आ गया। माता ने देखा घर आ गए, कहा अरे तुम कैसे घर आ गए, चप्पल नहीं लेके आए? कहा पहले खा लूं, फिर दुकान तो खुली ले आऊंगा। रोटी छोड़ो, बोले चप्पल लेके आ। तो है ना बोली, क्या बोला? अरे यार बड़ी गड़बड़ है। तो है ना बोली, खींच करके चप्पल निकाल के मारी। बोली कि है ना मारती हूँ ताकि कम से कम याद तो, स्मरण तो बना रहेगा, जोर से खा के आया हूँ तो लेके आएंगे, बिना लाए नहीं आएंगे। तो पहुंच गए बाजार में, बाजार पहुंचे तो फिर से नंबर लाना भूल गए। तो बोले इस बार फिर नंबर नहीं लाया। दुकानदार बोला कितने नंबर की चप्पल चाहिए? तो शर्ट उतार के बोलता है जो छपी है ना इतने नंबर के। तो बताइए, ये ग्रस्त जीवन थोड़ी है, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है त्रस्त जीवन। क्या है? त्रस्त है। पति पत्नी आपस में त्रस्त रहते हैं, दूसरे से त्रस्त हैं, चारों कोने पस्त हैं, फिर भी कहने के लिए ग्रस्त हैं। तो ग्रस्त नहीं है, तो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त आश्रम है, या भजन हो, एक दूसरे की केयरिंग हो, थोड़ा एक प्रेम स्वभाव हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो। जब शादी होती है तो उस समय पंडित जी 7 नियम बताते हैं। नियमों कभी सुने किसी ने शादी में? याद है नियम क्या होते हैं? नियम सुने ही नहीं, उस समय तो जल्दी होती है, घूमने जाना है, टिकट का टाइम हो रहा है, विदा का टाइम हो रहा है, फोटो खिंचानी है, वीडियो है, कोई नहीं सुन रहा संस्कारों को, शास्त्रों को, इसीलिए सारी दिक्कत हो रही है। तो ग्रस्त जीवन के लिए बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, बोलिए साथ में,
बंधु दार सुत सुता तब दासी दास
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 सही ते संबंध सबे अमार प्रयास
सही ते संबंध सबे अमार प्रयास
सही ते संबंध सबे अमार प्रयास
संबंध
बंधु दार सुत सुता पुत्र हो बंधु हो परिवार के मित्र हो एक ही संबंध है हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम सब कौन है ठाकुर जी के दास दासी। हम देखते हैं मंदिर में कोई झगड़ा नहीं करता धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के कभी झगड़ा नहीं किया किसी प्रभु जी ने किसी माता जी ने की बाल पकड़ लिए हो और ना प्रसाद की थाली छीन ली हो और किसी प्रभु जी ने ना अड़ंगी मार के गिरा दिया हो किसी प्रभु जी को बोले आज बताता हूँ तुझको ऐसे कभी नहीं हुआ। लेकिन जब काउंसलिंग सेशन होता है तो भक्त आते हैं और बोलते हैं हमारे घर में ये चल रहा है हमारे घर में चल रहा है और आते जब मंदिर में आएंगे ना क्लास लेने के लिए डिस्कशन प्रभु जी टाइम चाहिए था तब तिलक लगा के सुंदर से दीप दान करते हुए लगेगा बिल्कुल सदग्रस्त है कमरे में घुसते ही आश्चर्य हो जाते हैं मैं हैरान हो जाता हूँ आए तो बड़े ढंग से थे क्या रौद्र रूप ले लिया इन्होंने। उसका कारण यही है कि वो एक दूसरे को अपना मान रहे हैं है ना ये मेरी पत्नी है ये मेरा पति है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये कौन है सुत दारा बंधु जितने भी हैं ये सब कौन है तुम्हार दास दासी आपके दास दासी हैं। अगर ये मानेंगे इसीलिए हम मंदिर में झगड़ा नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये सब मेरे नहीं है ये सब भगवान के भक्त हैं इसलिए तो झगड़ा नहीं है। लेकिन घर में आते ही मेरी भावना आती अहम ममेती की भावना ये मेरे हैं जैसे ही भावना आएगी ये मेरे हैं तुरंत आप में अहंकार आएगा और उस अहंकार से क्रोध उत्पन्न होना निश्चित है। ये सोचना ही छोड़ दो कि ये मेरे हैं ये किसके बच्चे हैं बोले ये मेरे बच्चे हैं ये तो अहंकार है मेरे बच्चे किसके बच्चे हैं बोले ये ठाकुर जी के हैं ठाकुर की सेवा में लगाने हैं बस ठीक है। अब आपको ये सोच लिया कि भगवान के हैं भगवान की सेवा में लगाने हैं तो एक केयर बढ़ जाएगी। लोग सोचते हैं साधु बनने से ना हमारा जो घर का गृहस्थ जीवन वो गड़बड़ हो जाता है कई बार ऐसे कंप्लेंट आती है माताएं कहती हैं बस माला पकड़ ली है ना अब आगे नहीं और कुछ नहीं फिर कंठी बस कंठी पहन लिया ना और आगे बस तिलक लगा लिया ना बस फिर वो मुंडन करता है बस अब तो फिर बवाल चाहे महाबार बाल चले गए बोले तुमने तो बाल बाल खत्म कर डाला जीवन में ये क्या कर दिया तुमने बालों से बड़ा प्रेम है ना माताओं को प्रभुओं को लेकिन ये ठीक नहीं है। वैराग का जीवन युक्त वैराग मतलब है हम दोनों क्या है एक दूसरे के लिए सेवा की भावना से जुड़े हैं। एक गाना आता था पहले फिल्मों में हम बने तुम बने एक दूजे के लिए लेकिन वो सही नहीं गाना है गाना गलत है हम बने तुम बने कृष्ण के लिए इस दूजे के लिए ये दूजा जो है ना ये इसके लिए हमें बनना है। पति आरती करे पत्नी प्लेट धो दे पति सब्जी ला दे पत्नी सब्जी बना दे भोग बना दे पति शास्त्र सुना दे पत्नी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दे स्कूल से वो आ जाए तो पति ग्रस्त गीता सिखा दे फिर बच्चे खेलने चले जाएं लौट करके आए पत्नी प्रसाद खिला दे एक दूसरे के सहयोग से ही जो आगे बढ़ता है वो है जीवन ग्रस्त जिसमें कृष्ण केंद्र बिंदु है। जिस घर में भगवान का भजन होता है उसको कहते हैं भवन है ना हमारे एक भवन में आइएगा जगराता होता है ना भवन में लेकिन उस भवन में भ शब्द है भगवान का वास स्थान भवन भगवान का वास स्थान ये भवन है लेकिन उस भवन में से भ हटा दो भगवान को हटा दो क्या बचा वन में कौन रहते हैं हम लोग रहते हैं वन में ची 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 चा चा चो 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 आवाज आती है ना एकदम चैन ही नहीं है जीवन में उठा ही नहीं जाएगा रात को देर देर तक लड़ेंगे और फिर सुबह भगवान की भक्ति के लिए उठ नहीं पाते हैं ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कि ऐसा क्यों होता है पति पत्नी ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं क्योंकि धन की कामना के कारण ज्यादा धन की आवश्यकता है। पत्नी कहती ठीक है हम भक्त बन गए परंतु देखो सोफा तो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए है ना देखो हमारे पड़ोसी में क्या लोग कहेंगे कि कृष्ण भक्त है गरीब है इसलिए हमारे घर कैसा सोफा होना चाहिए जैसा पड़ोसी के घर में है। अब ये व्यक्ति जाता है क्लास सुनने के लिए इस्कॉन में और वहां एक क्वेश्चन सुनता है अतिहार प्रयासस प्रजल्पा चा नियम आग्रह अतिहार मत करो अतिहार का मतलब ज्यादा खाओ मत और ज्यादा कमाओ मत ज्यादा प्रयास मत करो पाने के लिए, जो मिल जाए भगवान की अरेंजमेंट से दैट इज सफिशिएंट, उससे जीवन गुजारो। लेकिन अति आहार की प्रयास करने के लिए जाता नहीं है तो पत्नी चाबी भरती लाइए लाइए, बड़ी गाड़ी लाइए। देखिए मेरे जो भाई है ना वो भक्त नहीं है, देखिए कितनी लंबी गाड़ी है उनके घर, हम लोग वही स्कूटर पर चल रहे हैं अभी तक, वही छोटी गाड़ी में चल रहे हैं। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, बड़ी गाड़ी लाइए। वो इससे पागल हो जाता है, कहता अभी एक्स्ट्रा काम करूंगा, फिर भजन छोड़ जाता है। फिर आते हैं भक्त, कहते हैं प्रभु जी पहले तो मेरी 16 माला होती थी लेकिन अभी आजकल 16 नहीं हो रही है। क्या है? एक्स्ट्रा एंडेवर्स, ज्यादा पाने का प्रयास, सप्रजल्पा प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं। लेकिन देखा गया है ज्यादा भागने से मिलता नहीं। इस माया का यही स्वभाव, जैसी आए तैसी जाए। इस माया का यही स्वभाव है, अगर वो आपके भाग्य की नहीं है, जैसी आएगी वैसे ही चली जाएगी। मैंने देखा है बहुत भक्त हैं, मंदिर आना छोड़ देंगे वो खेलने लग जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो शेयर मार्केट होता है, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आईसीआईसी शेयर बाजार खेलते हैं। ये क्या है, धन तुरंत आ जाएगा, रात रात जागेंगे, सुबह उठेंगे नहीं, मंगला आरती नहीं, कोई भजन नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, एक्स्ट्रा मनी आ रही है। लेकिन वो आ रही है 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, लॉस हो गया, 8,00,000 चले गए, 3,00,000, अब टेंशन में बैठा है। क्योंकि ये जो तनिक क्षण में व्यक्ति को पाना चाहता है ना, एक्स्ट्रा प्रयास, ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा गया है भागवतम में एक श्लोक आता है, सब लोग साथ में बोलिएगा इस श्लोक को,
ये
वा मैषे कृत सौहृद अर्थो जनेषु देअंबरा वर्तिकेषु ग्रहेषु जाया आत्मजा रातिमत्सु न प्रीतियुक्तो यावत अर्थश्च लोके। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को पांचवें अध्याय के, पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में 5:5:3 भागवत में कहते हैं, ये वा मैषे कृत सुहृद अर्थो जनेषु देअंबर वर्तिकेषु ग्रहेषु जाया आत्मजा रातिमत्सु न प्रीतियुक्तो यावत् अर्थश्च लोके। ये वा मैषे कृतस्थो अर्थो, जो व्यक्ति इतना प्रेमी बन गया है अर्थ बढ़ाने के लिए, जनेशु देहंबरा वर्तकेशु, उसको व्रत लेना चाहिए मैं उतना ही धन कमाऊंगा जितना देहंबरा, मेरा देह पोषण हो जाए इतना ही। आप में से कौन कौन है जिसके अगर नौकरी आज छोड़ दे तो वो 2 रोटी उसको खाने को नहीं मिलेगी, सूखी रोटी नहीं खाने को मिले। कौन कौन ऐसा है कोई हम में से जो अगर आज नौकरी छोड़ दे और 1 साल तक कोई काम ना करे तो उसको रोटी नहीं मिलेगी, 2 अन्न की रोटी होती है ना, 3 रोटी नहीं मिलेंगी, इतना हमारे अकाउंट में होगा सब में, सबके, कोई भी हो कितनी भी अवस्था में हो 2 रोटी पर डे खा सकता है और दिन में 1 बार खा करके जीवन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2 रोटी खा सकते हैं। तो इसके मतलब हम बाकी जो इतना समय गुजार रहे हैं अपना ये बोल करके, ग्रस्त है प्रभु जी ग्रस्त है ना, हम विरागी थोड़ी, हम फुल टाइम थोड़ी है, हम कैसे करें। मंदिर के भक्त ग्रस्त लोगों से अधिक सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी लोग अधिक सेवा करते हैं, है ना, रात रात दिन दिन सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग खाली हैं, पड़े रहते हैं मंदिर में, दान के पैसे से रोटी खाकर सोते हैं, ऐसा नहीं होता है। फुल टाइम भक्तों को कोई काम नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। और वो क्यों अपना कम में गुजारा करते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं देहांबर वार्तिकेशो, मुझे बस देह भरने के लिए जीवन का यापन करना है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। भगवान फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं, योग क्षेमम वहामि हम, जो मेरा भजन करते हैं उनके पास जो नहीं है वो मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा, ऐसे शास्त्र में कहा भगवान ने गीता में। अभी हमें भगवान पे भरोसा नहीं है तो अगर हम दौड़ते रहे रात दिन रात दिन रात दिन, तो हम देखते हैं गली में एक जानवर है दौड़ता रहता है, कौन, कभी लक्ष्मीपति बना, रोडपति ही रहता है, कभी नाम पड़ा उसका लक्ष्मीपति, कुक्कुर है लक्ष्मीपति, नाम क्या है उसका, रोडपति, रोड पे घूमने वाला है, कभी इस गाड़ी के नीचे कभी उस गाड़ी के नीचे, बेचारा भागता है हमसे ज्यादा भागता है, कभी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, अभी हमें भी एक मोड़ से यहाँ तक छोड़ता हुआ आया, वो साथ में आया गाड़ी के, छोड़ने आया, ड्रॉप किया फिर चला गया, वो बहुत मेहनत किया लेकिन रुपया भी नहीं पाया, इतनी मेहनत करता है। हम जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम भूल गए हैं, आए थे हरि भजन को, किस लिए आए थे, आए थे हरि भजन को,
आए थे हरि
भजन को
मीठा लागा दाम,
मीठा लागा दाम।
दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। बस ऐसे ही चला जाएगा जीवन, न माया, कोई बहुत बड़े बन गए हम, फैक्ट्रियां खुल गई और हजारों लोगों को नौकरी दे दी, ऐसे कितने मिलते हैं। अपना जीवन यापन करने में इधर उधर जीवन टाक, किसी भी समय मृत्यु आ जाती है। लेकिन हम और भगवान को तो हमने खुद ही त्याग दिया, मौका था लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। तो हमारे लिए रोटी की प्रॉब्लम नहीं है, रोटी के बाद जो स्थिति प्रारंभ होती है ना उसकी है। हिजुलनेस राधानाथ स्वामी महाराज क्लास में बोलते हैं कि एक व्यक्ति की अगर मान लीजिए 100 आवश्यकताएं हैं, उसमें से 5 आवश्यकताएं उसकी बेसिक हैं। क्या क्या है, कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अगर ना हो तो हम मर जाएंगे, क्या क्या चीजें बताए? हाँ जी, हाँ, रोटी हमारे लिए जरूरी, और
हवा,
हवा के बिना तो रह सकते हैं वैसे, लेकिन वो रोटी के अंदर ही आता है, और हवा तो फ्री है, उसको कमाने के लिए भागना नहीं है। ऐसी चीज जिसके लिए हम धन कमाते हैं, वो 5 आवश्यकताएं है, क्या है? हाँ पीछे प्रभु जी बताएंगे, ब्लू शर्ट में आप ही हैं, ब्लू शर्ट में। 5 क्या आवश्यकताएं हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ 5 क्या है?
अन्न वस्त्र
घर, रोटी कपड़ा मकान, अन्न वस्त्र और घर, और 3 तो आपने बता दी, चौथा कौन बताएंगे माता जी? हाँ बताइए, आप बताइए माता जी, चौथी क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक, उसके बिना हम मर जाएंगे। 5 में से 2 और रह गए हैं। हाँ जी, जल तो रोटी के अंदर ही आता है, और जल कमाना नहीं पड़ता, जल तो नदियों में ऐसे बह रहा है, भर के ले आते हैं, गंगा जल, कभी पैसे दिए ऐसे? हाँ जी, धन तो कमा ही रहे हैं, एक उसी की चर्चा है कि धन क्यों कमा रहे हैं। 5 विशेष आवश्यकता है बेसिक, वो क्या है? एक बोला रोटी कपड़ा मकान, और चौथा, फोर्थ वन, हाँ औषधियां, बीमारी से बचना, मेडिकल केयर बहुत जरूरी है, अगर दवाई ना हो तो हम मर सकते हैं। और 5वां, शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है, बेसिक एजुकेशन। अब बेसिक एजुकेशन मिल जाए, दवाई मिल जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और मकान, ये 5 आवश्यकता है बेसिक। इस बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, खुद सोच करके देखिए। रोज तो बीमार पड़ते नहीं, कभी कभार पैरासीटामोल और पेन किलर खरीदने के लिए रात को 12-12 बजे तक नौकरी थोड़ी कर रहा है आदमी। अरे केयर 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 के नाम पर हम बिल्कुल अपना जीवन बर्बाद करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रोग मैं देखता हूं अपने घर पे खड़े होकर के, इधर वाले लोग इधर जाते हैं नौकरी करने, इधर वाले लोग इधर जाते हैं, मैं सोचता हूं दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर लेते, इधर वाले इधर रह जाए, इधर वाले इधर रह जाए। लेकिन नहीं, भाग रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली का पॉल्यूशन इस समय कितना हो गया है, 600 क्रॉस हो गया, 630 आ रहा था, तो लोगों की आंखें जल रही हैं, फिर भी भागना बंद किया। ऑड इवन हो गया तो लोगों ने 2 गाड़ी खरीद ली, बोले एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, भाग रहे दिल्ली में। कभी फ्लाईओवर पर खड़े होकर के देखें, आपको लगेगा कौन किधर जा रहा है मालूम नहीं, बस पे मे पे चल रहे हैं आराम, इधर से उधर से। और फिर वो गजल गायक आते हैं, फिर वो गाते हैं, सीने में जलन दिल में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान इसलिए क्योंकि श्याम सुंदर की चरण नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, इसलिए परेशान है। आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान ठाकुर जी नहीं है, भगवान होते तो घर में बैठ के चिंतन करता, भजन करता। शिला प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे तो ऊपर से बम गिर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उनके घर में भक्ति रक्षक स्वामी महाराज आए थे, श्रीधर या रक्षक, तो महाराज आकर के कहते हैं, अभय चरण चलो चलो अपना सामान पैक करो, हमको कलकत्ता छोड़कर जाना है, सभी लोग पलायन कर रहे हैं कलकत्ता से, सबके बड़े बड़े बक्से पहले जमाने में होते थे कपड़ों का बैग लेके सब जा रहे हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी से जब महाराज ने बोला इस प्रकार से, तो प्रभुपाद जी अभय चरण उस महाराज को बोलते हैं, अभी दीक्षा हुई है लेकिन अभी वो सन्यासी नहीं है, ग्रस्त है, सदग्रस्त है। कहते हैं महाराज, रक्षति ते कृष्णा न रक्षति ते कृष्णा, रक्षा करें तो भी कृष्ण ही है, न रक्षा करें तो भी कृष्ण है, मारे कृष्ण राखे के और रखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, कौन सा वर्ल्ड वार का बम मेरे ही घर पर आकर गिरेगा। ये विश्वास जो था ना, ये फेथ जो था, श्रद्धा, परिपक्व श्रद्धा, ये व्यक्ति को भगवान की शरणागति मिल जाती है। अभी हमारी श्रद्धा तो है, आप सब हैं, श्रद्धा है, लेकिन कोमल श्रद्धा है। टाइम देख रहे हैं कब खत्म होगा, प्रसाद खाएं जाएं अपने घर, बुलाया है प्रभु जी ने तो आना पड़ा है, लेकिन वो श्रद्धा परिपक्व नहीं है। मान लीजिए अभी पता चल जाए आपको कि इस क्लास के बाद बाहर एक व्यक्ति हथियार लेकर खड़ा है, सबको गोली मार देगा, फिर कोई नहीं जाएगा, फिर सबकी वासुदेवम कथा रुचि, क्योंकि हमें मालूम है बाहर कोई नहीं खड़ा इसलिए हम चले जाएंगे, विश्वास है हमारा। तो हम ऐसी ऐसी जगहों पर विश्वास करके बैठे हैं, पता है बाहर हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, बाहर हमें हमारी मृत्यु नहीं है, ये मान करके पंखे के नीचे बैठे हैं, ये सोच करके पंखा नहीं गिरेगा, लेकिन हम सुनते हैं कई पंखे गिर जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम बैठे हैं, हमने विश्वास अपना अलग अलग जगहों पे लगाया है, लेकिन अपना विश्वास अगर ठाकुर जी के चरणों में लगा दे तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन आएगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के लिए। इस प्रकार का जीवन ही सद्गत जीवन है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, महाराज बम गिरना होगा तो वो जहां जाऊंगा वहां भी गिरूंगा, मृत्यु आनी होगी तो वहां पे भी आएगी, आप न आए ताए को ताए तहां ले जाए। मृत्यु आपके पास आती नहीं है, आपको अपने मुख में बुला लेती है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। एक बार गरुण भगवान पर सवार होकर के विष्णु जी आए और मीटिंग करने आए कैलाश पर्वत पे शिव जी से, रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे कैसा चल रहा है कैलाश डिपार्टमेंट, भूत प्रेत परेशान तो नहीं कर रहे लोगों को, तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए कैलाश पर्वत पे शिव जी के पास मिलने आए। गरुण को बोला, अभी आप आए तो अपना पार्किंग व्हीकल कहां लगाया आपने, बाहर लगाया। अपना गरुण बाहर छोड़कर गुफा में प्रवेश कर गए, कैलाश में शिव जी बैठे थे, मीटिंग चालू हो गई, और भी कई लोगों को बुलाया, द्वादश महाजनों को बुलाया, जनक महाराज आए, सभी अपना अपना रथ खड़ा करके अंदर आ रहे थे। अंत में यहां पर यमराज भी आए। जब यमराज आए तो वहां पर पत्थर के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, यमराज ने उसको ऐसे करके देखा और फिर अंदर चले गए। तो गरुड़ ने सोचा, ये पक्षी है, छोटा है पर पक्षी है, मेरी ही जाति का है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, यमराज की दृष्टि जिस पे हो जाए इसका मतलब उसकी मृत्यु नजदीक है, मुझे इस पक्षी की मदद करनी है। बड़ा भाई जहां हो वहां छोटे भाई की मदद नहीं होनी चाहिए। तो पक्षी को बोला, तू यहां से उड़ जा, तेरी मृत्यु आने वाली। कहा, मैं छोटा पक्षी उड़ूंगा भी तो कितना, 100-200 मील उड़ जा, मीटर उड़ जाऊंगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, और यमराज तो इतने विशाल है, मुझे पकड़ लेंगे, मृत्यु पाश में मान लेंगे। कहा, नहीं नहीं, एक काम करता हूं, मीटिंग अभी लंबी चलेगी, मैं ही तुझे छोड़ आता हूं। 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, वायु यात्रा करके गरुड़ ने उस चिड़िया को अपनी पीठ पे बिठा के 1000 किलोमीटर दूर छोड़ दिया और बाहर वापिस आके खड़े हो गए। मीटिंग फिनिश हुई, सब लोग बाहर निकले, समागम के बाद अपने अपने वाहन पे बैठ के जाने लगे। तो यमराज से गरुड़ पूछते हैं, प्रभु मैंने आपको आते वक्त हरे कृष्णा कहा, आप तेजी में थे, तुरंत निकल गए, हरे कृष्णा का जवाब भी नहीं दिया। यमराज बोले, ओ विष्णु भगवान पहुंच चुके थे, अभी तुरंत वारंट कट जाते मेरे, तुम हटो सेवा से, टाइम पे नहीं आते हो, तो मेरे को पहले पहुंचना था पर मैं लेट हो गया तो मैं भागा। बोले, पर आपने उस चिड़िया पर दृष्टिपात किया, वो चिड़िया ने आपका क्या, आपके साथ ऐसा किया कि आपने उस छोटी चिड़िया पर दृष्टिपात किया। चिड़िया पर दृष्टिपात इसलिए किया, उसने कहा, मैं आश्चर्यचकित था। यमराज ने कहा, मैं आश्चर्यचकित था कि इसकी मृत्यु तो यहां से 1000 किलोमीटर दूर अजगर के खाने से है, ये यहां क्या कर रही है। गरुण की आंखों में आंसू आ गए, बोले, मैंने क्या किया, अच्छी खासी यहां बची हुई थी, मैंने मेहनत के चक्कर में उठा करके उसको उस जंगल में छोड़ाया जहां अजगर उसको आज खाने वाला है, ये आश्चर्य था। तो इसलिए आप न आए ताए को ताए तहां ले जाए, ये आती नहीं है, उसको वहां ले जाती है। तो आप अगर मृत्यु से बचने का सोच करके घर में बैठे रहते हैं तो भूल जाइए, जिस दिन आनी होगी तो बाथरूम में स्लिप होकर के कई लोग मर जाते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग बाथरूम में स्लिप होकर के डेथ आ जाती है। तो मृत्यु कभी भी किसी भी पल आ सकती है। तो श्रील प्रभुपाद ने यही कहा और उन सन्यासी को शिक्षा दी, ग्रस्त होकर के एक सन्यासी को शिक्षा दी कि देखिए मृत्यु आनी होगी तो यहां आएगी, महाराज ये समय है कि जो लोग इस प्रलय काल में, इस बमबारी में, इस वर्ल्ड वार में दुखी हैं, इनके हृदय को शांति पहुंचाएं, यही ग्रस्त आश्रम का कर्तव्य है। तो मैं क्या करूंगा, कीर्तन करूंगा। और उन्होंने कीर्तन करना हाथ में करताल लिया,
भक्ति रक्षक स्वामी महाराज ने मृदंगा लिया और वो निकल पड़े और गाने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरि गोपाल बोलो, हाँ गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंदा बोलो, हाँ राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जोर से गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में शास्त्रों में पुराणों में कहा गया कि ऐसा कीर्तन होना चाहिए कथा के बीच में, दिन में रात दिन। ग्रस्त आश्रम का मतलब है जिस घर में नित्य प्रतिदिन क्या होता हो, कीर्तन होता हो। बोलिए साथ में, यो वा गृह आश्रमे तिष्ठे,
यो वा गृह आश्रमे तिष्ठे,
नित्यं गोविंद
घोषणां, गोविंद
घोषणां, कृत्वा च पूजयत्वा
च,
पाप संतरो भवे,
पाप संतरो भवे,
यो वा गृहाश्रमे तिष्ठे,
यो वा गृहाश्रमे तिष्ठे,
नित्यं गोविंद घोषणा,
गोविंद
चा पूजयत्वा
च,
पाप संतरो भवे,
पाप संतरो भवे।
पद्म पुराण के अंदर आता है, यो वा गृह आश्रमे तिष्ठे, जो घर आश्रम के अंदर कहता है कि मैं गृहस्थ हूं, उसके घर में क्या आना चाहिए, नित्यम गोविंद घोषणाम, रोज गोविंद का उच्चारण होना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए, गोविंद गोविंद गोविंद, तो ऐसे रोज उच्चारण होना चाहिए, नित्यम गोविंद घोषणाम, यही उसकी कृत्वाचा, यही उसका कर्म है, पूज्यत्वाचा, यही उसकी पूजा है, और इसको करने से पापत संतरो भवेत, सभी पाप उसके घर से उड़ जाते हैं। घर में शंख बजाने से, गोविंद उच्चारण करने से, कीर्तन करने से, कभी कभी हम तो लगा डालते हैं, कीर्तन कर दिया, बच्चों को बोला चलो डांस करेंगे, हैव फन, है ना, तो खूब कीर्तन करो, क्या जरूरत है कि नहीं नहीं बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, अभी तो छोटे हैं, अभी थोड़ी भजन में लगाएंगे, है ना, दुख खाएंगे, लात खाएंगे, घूम के आएंगे तब भजन में लगाएंगे, ऐसे नहीं, लगाइए, आज ही लगाइए, इससे पहले दुख आए, दुख तो आएगा इस दुखालयम में, पर उस दुख को सहने की शक्ति देना गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रह तगोलोक भाए। जिस दिन घर में भजन देखता हूं उस दिन घर क्या बन जाता है? तो अभी क्या बन गया है ना, तो अभी शुभ विलास प्रभु का घर क्या बन गया? गोलोक धाम। अभी मान लो अगर किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी की मृत्यु आ जाए इसी पल, तो कहां गया वो? गोलोक में तो था ही, जाएगा कहां? गोलोक में तो है, गोलोक में ही रहेगा, गोलोक धाम बन चुका है स्थान, है ना। नारद जी को यही बोला गया, नारद जी आदि जब रावण का उत्पात बढ़ गया था तो उस समय सभी ने भगवान को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करी। नारद जी से भी पूछा गया, शिवजी से भी पूछा गया, ब्रह्मा जी से भी पूछा गया, सबने अपने अपने वृत्तांत सुनाए कि भगवान राम को प्रकट कैसे किया जाए। जब प्रकट करने की बात चल रही थी तो नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, आप बताइए कि भगवान प्रकट कैसे होंगे। तो नारद जी कहते हैं, देखिए मैं जानता हूं रावण का उत्पात बढ़ गया है, पर मुझे एक बार भगवान ने कहा था, नाहं वासांसि वैकुंठे नाहं हृदयेषु योगिनां हृदयेषु वा। ना ही मैं योगियों के हृदय में हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में हूँ। कहाँ हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्तां तिष्ठामि तत्र नारदः। हे नारद, मैं वहां वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त जोर जोर से मेरा गायन करते हैं। तो आप लोग कीर्तन करिए, राम आ जाएंगे। सबने देवताओं ने कहा, बात तो ठीक है, ब्रह्मा जी आपका क्या मत है? ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए मुझे तो चतुश्लोकी भागवत सुनाने के बाद, अपना शंख मेरे मस्तक से छुलाने के बाद भगवान अदृश्य हो गए थे। मुझे याद है चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान, अगर मैं भागवत उच्चारण करूं, यहां भागवत का उच्चारण होगा वहां जरूर भगवान प्रकट होंगे। शिव जी से कहा गया, आपका तो चेला ही है रावण, है ना, आपका तो शागिर्द है, उसको मारने के लिए आप बताएंगे युक्ति? पार्वती सहने लगी, नहीं नहीं शिव जी आप तो नहीं बोलेंगे अपने भक्त को मरवाने के लिए। देवी देवता ऐसे ही हैं, देवी देवताओं में से यही गुण है कि वो लोग अपना भक्त भी हो, लेकिन अगर वो भगवान बीच में आए तो फिर देवी देवता कहते भगवान आप ही रक्षा करें, आप ही मारें, हम साइड हो जाएंगे। शिव जी से पूछा गया, आप बताइए ना कैसे राम प्रकट होंगे। शिव जी कहते हैं पार्वती को और अन्य देवताओं को, कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जान। मैं जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हरि हैं, कण कण में विराजमान है, परंतु दिखते नहीं है। कैसे दिखेंगे? प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होंगे भगवान। तो अगर प्रेम पूर्वक कोई भजन करे, आप देखें गीता में भगवान कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। दुखी मन से तो भजोगे नहीं, ऐसे उदास, क्लास में भी ऐसे माला जपते में, अरे अरे प्रसाद पाते में भी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उदास मन से कुछ भी भजन का फल नहीं है। भगवान का भजन है उत्साह, धैर्यात, निश्चयात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो वृत्ति षड्विर भक्तिर प्रसिद्धिति। भक्ति आगे बढ़ेगी जब उत्साह होगा, उत्साह के साथ में भजन करना है, उत्साह के साथ में कीर्तन करना है, उत्साह के साथ में प्रसाद खाना है, उत्साह के साथ में कथा सुननी है, उत्साह तो दिख नहीं रहा है, कैसे सुनेंगे? उत्साह, उत्साह मतलब मेरुदंड सीधा हो, कंठ उठा ऊपर हो, उत्कंठित होकर कथा सुननी है। ऐसे कथा सुनेंगे तो पक्की बात है ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रवणंती गायंती अभिक्ष निशाह, श्रवण करे गाए या फिर उसका अनुमोदन ही करे कि मुझे कथा सुननी है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने युक्ति दी कि भगवान हर जगह है, पर प्रेम से पुकारेंगे तो आएंगे। तो प्रेम से पुकारा गया, फिर राम आए, और राम आए तो राम ने आकर के आप जानते हैं अयोध्या में अवतार लिया भगवान ने, और रावण का वध कर दिया। रावण का वध किया तो रावण को जब मार रहे हैं तो जोर जोर से सभी लोग बोल रहे अरे शिव जी का उपासक है, इसको कौन मार सकता है? तो ये जोर जोर से बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, 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 और इतना जल चढ़ाया था। आप तो खाली एक लोटा जल ही चढ़ाते हैं, वो शीश भी चढ़ाया था, और एक नहीं दस, दस सिर चढ़ाया था। बैजनाथ धाम बिहार में जाकर के शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, दस सर चढ़ा दिया वो, और भगवान शिव जी ने मुंह मोड़ लिया। कहते हैं पार्वती कहती है, प्रभु अपने भक्ति की रक्षा तो नहीं करेंगे?
कहा अरे भक्त ने बड़ी गड़बड़ कर दी है, जो सबकी रक्षा करने वाला है उसी से पंगा ले लिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए पार्वती तुम भी मुख मोड़ लो, मैं भी मुंह मोड़ लेता हूं और हम दोनों भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से करना चाहिए जीवन में। तो अभी हमने तीसरी चीज चौथी चीज क्या सीखी है, हमने अभी तक चार चीजें सीखी हैं, याद है आपको, कौन बता सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, अगर पहला भूल गए तो कैसे आगे बढ़ेंगे। पहला माता पिता की सेवा करना, दूसरा था लेकिन ठीक है, माता पिता पति पत्नी संतुष्ट रहे, तीसरा धन उतना ही कमाना है जिससे हमारी आवश्यकता हो, अधिक की हमें जरूरत ना हो, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बस, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। चौथा क्या है, उस घर में गोविंद घोषणम, नित्यम गोविंद घोषणाम, रोज भगवान का कीर्तन होना चाहिए, तो वो गृहस्थ आश्रम है। आगे कहते हैं अब जो घर में पैसा है, लक्ष्मी है, उसके कई चाबियां लगाकर अंदर रखते हैं छुपा छुपा के, है ना, कोई आए मंदिर से कि दान दे दीजिए, अभी तो थोड़ा धंधा मंदा है बेटे, चाबी छुपा दे, चाबी छुपा दे, है ना, तकिए के नीचे, मान लीजिए हरिभक्त सुदामा प्रभु बोले हमारे सेंटर के लिए कुछ दीजिए, प्रभु अभी तो थोड़ा आप समझते हैं, आप तो खुद समझदार हैं, सारी समझदारी तभी है, जैसे कोई और बात आ जाएगी, प्रभु आपको समझ नहीं है इस बात की, अभी तो आप समझदार बता रहे थे। तो उस समय दान की जो स्थिति है, रूप गोस्वामी ने दिया, भागवत में दिया, अनेक पुराणों में दिया गया, एक व्यक्ति को अवश्य ग्रस्त, सदग्रस्त मतलब है व्यक्ति दान दक्षिणा जरूर दे, जरूर उसको दान देना चाहिए, उससे क्या होता है उसका जो आकर्षण है धन के प्रति वो घटता है, धीरे धीरे घटेगा। तो क्या बताया गया, कहते हैं विभागशीला सततम क्षमायुक्तो दयालुकः ग्रस्तस्तु समाख्यातो न ग्रहेण ग्रही भवेत। शास्त्र कह रहे हैं ग्रहेण ग्रही भवेत, घर में रहने वाला ग्रस्त नहीं है कि ब्रह्मचारी मंदिर में, सन्यासी जंगल में और घर में रहे वो ग्रस्त, ना, ग्रहण ग्रहे भवेत नहीं है, उसके अंदर तीन गुण होने चाहिए। पहला विभागशीला, उसको अपने धन का विभाग करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते 50% धन भगवान की सेवा में, इसका मतलब ये नहीं 50% डोनेशन ही देना है, मंदिर में घर भी में भी मंदिर है, घर में जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं आपका परिवार का हिस्सा है वो भी उसी के अंदर आता है, और उसमें से कुछ हिस्सा पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, मंदिर कंस्ट्रक्शन, इसमें हमें देना चाहिए। विभागशीला सततम, ये नहीं एक बार दे दिया, मायापुर गए थे ना हम पिछली यात्रा में, मायापुर में एक ब्रिक देके आए थे, एक स्क्वायर फुट, एक बार नहीं, विभागशील सततम, हर महीने कुछ ना कुछ उस ग्रस्त को निकालना चाहिए, और क्षमायुक्तो, हर एक को क्षमा कर देना चाहिए, उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसके अंदर फॉरगिव नेचर होना चाहिए, किसी ने अगर मंदिर में या परिवार में उसके साथ कुछ कर दिया, क्षमायुक्तो, छोड़ दिया, माफ कर दिया, फॉरगिव, और भूल गए, फॉरगेट, ठीक है किया तो किया, मेरे ही शायद कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि इसके कारण इन्होंने मुझसे ऐसा दुर्व्यवहार किया, अब वो कट गए हैं, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना बैर है ना दोस्ती है, भगवान का भजन करता है। क्षमा युक्तो और दयालु, कहा दयालु का मतलब क्या है, दयालु का मतलब ये नहीं कि घर पे कोई भिक्षा मांगने आया तो दो चार रोटी खिला दिया, दयालु है, दयालु का मतलब है वो घर में बैठा बैठा ये चिंतन करता है प्रचार कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो ये नहीं सोचता उसका ये अंग गुम हो जाता है, दयालु कहा। दयालु मतलब जैसे प्रभु जी ने किया, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार फैमिली डिवोटी को बुलाया और कथा सुनाया आगे बढ़ाने के लिए, ये दयालुता है, यही ग्रस्त जीवन का अंग है। जितने यहां बैठे हैं आप सबको ऐसा कार्यक्रम कराना चाहिए, अगर नहीं कराते हैं तो आपका वो अंग चला गया, दयालु कहा। आप देखें भगवान को आरती उतारते हैं हिंदुस्तान में, जब भगवान को आरती उतारी जाती है तो सब लोग भाग के लेना चाहते हैं कि नहीं, और 10-10 रुपया भी निकाल के डालते हैं ना, 5-1, उससे ऊपर बढ़ते नहीं 10 रुपये। एक बार 10 रुपए की और 2000 रुपए का कॉम्पिटिशन हो गया, 2000 वाला कहता है जब से मोदी जी ने छापा है ना, हर गले में मैं हूं, हर गली में मैं हूं, हर मोहल्ले में मैं हूं, होटल में हूं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे मैं हूं, है ना। तो 10 रुपए के नोट को बहुत गिल्टी लग रहा था, अरे देखो अपनी तारीफ पे तारीफ कर रहा है ना। तो 10 रुपए वाला कहता है प्रभु देखो 2000 रुपए वाले प्रभु, आप हर जगह होंगे पर एक स्थान पर सिर्फ मेरी ही दादागिरी चलती है। कौन सी जगह है? वहां अपनी दादागिरी चलती है, वहां पर मंदिर में हम ही रहेंगे, वहां कोई 2000 का कोई नहीं डालेगा, वहां पर दादागिरी हमारी। तो आरती की प्लेट आती है, उसमें से 10-10 डालते हैं, 5-10। तो आरती लेने में उत्सुक है भारतीय भक्त। तो एक महाराज अपने क्लास में बताते हैं आरती शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ जानते हैं? अर्थ, अर्थ क्या होता है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। अर्थ, अर्थ मतलब दुखी पीड़ित। तो भगवान की पीड़ा को जब हम उतारते हैं, अर्थ का आवरण करते हैं, तो अर्थ आरती, वो आरती है। भगवान के दुख को निकालते हैं, प्रभु आपके शरीर से कष्ट चले जाए। यशोदा मैया रोज उतारती थी मेरे काना को, कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो, और फिर वो आरती सब में घुमाई जाती, प्रभु आप खुश रहे, मैं आपका कष्ट अपने सिर पर लेता हूं। यही तो व्रजवास का भाव है। व्रजवासी चाहता है लाला खुश रहे, हम दुखी रहे, है ना। लेकिन हमारा भाव नहीं है, हम आरती जब पता चल जाए कि दुख लेना है ना, कोई लेगा नहीं, 10 रुपया भी अंदर डाल देंगे अंदर। वो लेते क्यों है? उनको लगता है कि हमें सुख मिलेगा, हमारी वृद्धि होगी, हमें आशीर्वाद मिलेगा। भगवान से आने वाला दुख भी आशीर्वाद ही है। भगवान का दुख क्या है? भगवान का दुख है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूलकर भोग की वांछा करते हो, मुझको भूल गए हो, ये दुख है। और इस दुख को जब उतारते हैं तो भक्त कहते हैं प्रतिज्ञा, आरती लेते हैं, प्रभु चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा गली गली प्रचार करूंगा, आपके एक एक व्यक्ति को जीवात्मा को लाकर के आपकी शरण में डालूंगा, ये आरती मैं लेता हूं, मैं प्रण लेता हूं। अब ये प्रण तो रोज ले रहे हैं, प्रण लेके जाके खराटे मार के पराठे खा के सो जाते घर में, तो इस व्यक्ति को क्या भगवान खुश होंगे? भगवान कहेंगे अरे रोज आरती ले रहा है तू, वो कुछ काम नहीं करता है, तू पापी व्यक्ति है, तू ढोंगी है, तू नकली व्यक्ति है। तो हमारा कर्तव्य है, सदग्रस्त का कर्तव्य है कि वो क्षमाशील हो, क्षमायुक्त हो, दयालु कह, ऐसे कार्यक्रम करे घर में जहां लोगों पर अड़ोस पड़ोस की बस्ती में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरी हाउस शुड बिकम अ टेम्पल। हर घर में मंदिर होना चाहिए, घर घर मंदिर होना चाहिए, है ना। सबके घरों में मंदिर होना चाहिए, सबके घर में ऑल्टर हो, प्रोग्राम चले, एक सेंटर नहीं है, अनेकों सेंटर खोलो, जरूरी नहीं है। हाँ एक संडे का सेंटर अलग है, बुधवार को एक खोल दो, जरूरी है। एक यहाँ इस घर में इतना स्पेस है, यहाँ रोज कार्यक्रम हो, कथा कीर्तन, यही दयालु का भाव है। क्षमायुक्तो दयालु को विभागशीला सततम, रोज विभाग करे अपना, महीने के महीने निकाल के ठाकुर सेवा के लिए निकाल दे, है ना। गोपियों का भाव यही है। गोपियों का क्या भाव है? उनको कृष्ण को देखकर आनंद प्राप्त होता है। हमें कितनी बार आनंद लगता है भगवान को देख करके, एक बार दर्शन कर लेते हैं ना, फिर दूसरी बार दंडवत करने का मन भी नहीं करता, करे अभी तो किया था 5 मिनट पहले है, तो होता है कि नहीं मन में। जो मंदिर में होते हैं भक्त, तो सुबह आते हैं मंगल आरती लंबा दंडवत मारते हैं, फिर थोड़ी देर दर्शन आरती आते हैं तो पंचांग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब आते हैं भागवतम में दौड़े दौड़े तो करते ही नहीं, फिर खाली व्यासासन पे थोड़ा सा करके बैठ जाते हैं, और फिर प्रसाद के टाइम पे तो सब कहां भगवान याद आ रहे हैं। तो भगवान को हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन कैसा भाव है गोपियों का? कहते हैं गोपाल, जब यशोदा दामोदर लीला अभी हुई है, कैसा भाव है गोपियों का? कहते हैं नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दिवर लोचनम यशोदानंदन नेमी कृष्ण गोपाल रूपिनम नीलोत्पल दलम श्यामम यशोदानंद नंदनम गोपिका नयनानंदम गोपाल प्रणाम्यहम। कहते हैं आचार्य नवीन नीरद श्यामम, जैसे नवीन बादलों का रंग है यशोदा नंदन नेमी, ऐसे ही यशोदा नंदन का रंग है। गोपियों का नयन आनंद है, गोपियों को रोज नवीन आनंद प्राप्त होता है जब वो देखती हैं। राधा रानी कहती हैं ललिता से, हे ललिते तुम जानती हो मेरा दिल एक व्यक्ति ने चुरा लिया है। तो बोलती कौन? कहा वो जो बांसुरी लेकर के एक युवा पुरुष गोवर्धन में घूमता है। कहा वो युवा थोड़ी है और नवीन थोड़ी है, नया थोड़ी है, वही तो है जिसके साथ अभी आप कल रात्रि में रास नृत्य करके आई है। लेकिन उनके लिए क्या है? नवीन, रोज नवीन है, रोज नया है, नव यौवन है। जिसको भगवान पुराना हो गया ना, जैसे दामोदर लीला होती है, पहले दिन लोग सुनेंगे, दूसरे दिन सुनेंगे, तीसरे दिन मोबाइल पे खेलने लग जाएंगे, रोज तो सुनते हैं, वही तो है, मान दिया था भगवान ने, है ना। हमें शास्त्र सुनना, हर बार वो कथा नवीन लगे तो हृदय कलुषित रक्त है, वरना कलुषित युक्त है।
कलुषित मुक्त है, रोज वो कथा नवीन लगे, रोज उत्साह वर्धन हो कृष्ण कथा सुनने के लिए, वासुदेवम कथा रुचि उत्पन्न हो जाए। ये नहीं कि बस ये ग्लास तो सुना हुआ है, ये पॉइंट तो पहले से पता था, ये तो रिपीट वाला मार दिया, ये वाला वहां बोला था, ये करने बैठे हम यहाँ पर। नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दिवर लोचनम, उनके नेत्रों को निहारना, उनके चरणों को निहारना। और ऐसा गोपियों का आनंद है, रोज पाती हैं, रोज भगवान को रोज देखती हैं, हो ये सुंदर व्यक्ति कौन है, वही कृष्ण है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, रोज उनको कृष्ण अच्छे लगते हैं, रोज नवीन दर्शन करें भगवान का, अपने ही घर के भगवान का रोज रूप निहारना चाहिए। आज किस रूप में बैठे हैं, आज गुस्से में बैठे हैं, आज प्रेम से देख रहे हैं, संबंध स्थापित होना चाहिए। इसीलिए घर के विग्रहों के नाम होने चाहिए। लोगों के घर पे जाओ, क्या नाम है आपके घर के विग्रह का, कहा लड्डू गोपाल, क्या नाम है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कोई संबंध ही नहीं है। संबंध अभिध्या प्रयोजन, पहले संबंध होना चाहिए। तो घर में आप मान लो बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखो, पहला बच्चा हुआ बच्चा, दूसरा हुआ बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, पड़ोस वाले का भी बच्चा, सारे बच्चे खेल रहे हैं, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, सब जगह बच्चा हो गया। लेकिन नाम है, राहुल है, श्याम है, कृष्ण है, गौरांग है। नाम क्यों है, क्योंकि नाम से संबंध है। मेरा वाला कौन सा है, जब आवाज लगाएंगे श्याम घर आओ तो कौन आएगा, श्याम ही आएगा। तो एक संबंध स्थापित होना चाहिए, हर लड्डू गोपाल का, राधा कृष्ण विग्रह का नाम होना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी के कुछ भक्त थे जो संकीर्तन पार्टी में घुमा करते थे विदेशों में, उन्होंने राधा कृष्ण रखे थे, रोज राधा कृष्ण गिर जाते थे, क्योंकि ट्रक चलता था, संकीर्तन होता था, सो एवरीडे फॉल डाउन, गिरता था भगवान, तो उठा के रखते थे। भक्तों ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने रस्सी से भगवान को बांध दिया। तो शिला प्रभुपाद जी से मिलने आई संकीर्तन पार्टी, प्रभुपाद ने पूछा कैसा चल रहा है आपका संकीर्तन कार्यक्रम, कहा प्रभुपाद बाय योर ब्लेसिंग्स ओ सो नाइस, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, इतने लोगों से मिले, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहा आपके पास विग्रह है, केंद्र भगवान है, कहा राधा कृष्ण है, क्या नाम है, कहा प्रभुपाद अभी नाम तो नहीं रखा, हम तो आपसे ही नाम पूछना चाहते थे। प्रभुपाद बोले चलिए दिखाइए, तो प्रभुपाद गए देखने के लिए, क्या देखा, रस्सी से बंधे हुए भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया राधा दामोदर, क्योंकि उनको उधर को दाम रस्सी से बांधा हुआ था। श्री राधा दामोदर भगवान की जाए जाए। तो इस प्रकार से राधा दामोदर नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से देखिए ग्रस्त जीवन में ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। एक भक्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना अच्छा उनका भाव है कि वो लोग ना प्रभु जी रोज डेकोरेशन करते हैं भगवान का, और डेकोरेशन करने के बाद में अपनी पत्नी से कहते हैं अच्छा बताओ आज जो है कितनी गाय लगाई है मैंने अल्टर में, 10-15 गाय है, तो डेकोरेशन आज मैंने कितने पीकॉक लगाए हैं, अच्छा बताओ आज भगवान के चरण की जो पायल है उसका क्या रंग है, आज भगवान राधा रानी के हाथ के जो कंगन है उसका क्या रंग है। तो पति पत्नी बच्चों को भी, जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे, अच्छा बेटा बताओ आज भगवान ने किस कलर के कपड़े पहने, बच्चे जाएंगे देखने के लिए, ऐसे करके ये न किन प्रकार है न मन कृष्ण विषय, जैसे तैसे करके बच्चों को भी एंगेज करना है। ये नहीं आते ही पढ़ाई कर ले उछा के झपाक मार दिया है ना, वैसे डिवोटी संडे डिवोटी, श्री प्रभुपाद भक्त बोलते हैं संडे डिवोटी, संडे जाएंगे कांग्रीगेशन प्रोग्राम में तिलक लगा करके डिफरेंट बन के गोपी ड्रेस पहन के, और वैसे जीन्स पहन के चश्मा लगा के बेल्ट लेके, तेरी तो ऐसे थाट मारा बच्चे को है, वो ठीक नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं भक्त 24 घंटे का भक्त होना चाहिए, एक मिनट का भक्त नहीं कि एक दिन का भक्त है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिउपासते, है ना, भगवान कहते सतत कीर्तन करना है, सोते वक्त भी मैं भक्त हूं ये स्मरण रहे, जागते वक्त भी मैं भक्त हूं। कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चले गए, देखा इधर उधर ब्लैक वाला ले लिया, बोले रिश्तेदारों के लिए ले जा रहा हूं, तो ये गलत है, इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है। अगर मैं भक्त हूं तो मैं फिर लिमका ले लूंगा ना, मैं काला वाला लू ही क्यों, मेरा हाथ जा रहा है किसी भी नाम से जा रहा हूं, क्यों आवश्यकता है। बोले हम बुलाएंगे उनको अपने घर में जो काला वाला नहीं पीते होंगे, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राम का नहीं बस त्याग दो उसको, तो ठीक है आएगा पीछे पीछे अपने आप ही। जब आप भक्त बन जाएंगे, भगवान आपको साक्षात्कार कराएंगे, आपके कारण लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान यशस्वी हैं, उनका यश मिलता है भक्त को, मिलेगा, सारा गली मोहल्ला आपका सम्मान करने लगेगा, लेकिन समय लगता है। काली कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, काला कोल्ड ड्रिंक, नमकीन खाना छोड़ दो, बाहर का खरीदोगे फिर छुप छुप के लाओगे, कोई देख ना ले, है ना, वो ठीक नहीं है। छुपने की आवश्यकता क्या, भक्त 24 घंटे भक्त है ना।
तो कई बार इस तरह से होता है, भक्त मिल जाते हैं रास्ते में, बोलते तिलक प्रभु नहीं ला, ओ प्रभु जी वो इमरजेंसी में मैं आया ना थोड़ा, तो प्रभु जी थोड़ा इमरजेंसी था, घर में दूध नहीं था ना प्रभु, तो तिलक लगाना रह गया प्रभु। ठीक है मैं समझ गया, आप तिलक नहीं लगा, सोते वक्त लगा लो, जाग करके इमरजेंसी पड़ जाए तो, सोते वक्त अगर मान लो रात को आग भी लग जाए तो आपके तिलक लगा होगा, सोने से पहले तिलक लगा के सो जाओ। मैं एक बार कथा करने गया था किसी जगह, भागवत कथा थी, तो रात्रि विश्राम करने लगा तो वहां लोग बैठे रहते, क्वेश्चन पूछते रहते, प्रश्न उत्तर 12:00-1:00 बज गया। मैंने कहा आप सो जाइए, मुझे तो सुबह उठना होता जल्दी। कह रहे अच्छा ठीक है प्रभु जी, तो प्रभु जी क्या लेंगे? मैंने कुछ नहीं, बस एक बाल्टी पानी दे दीजिए, स्नान करना है। कह रहे 1:00 स्नान करेंगे? मैंने कहा सोने से पहले स्नान करता हूँ, आप लोग 10:00 से बैठा के रखे हैं, 1:00 आ दिए, मैं क्या करूँ? हाँ आपने पहले बोलना चाहिए था। ठीक है स्नान करवा दिया, स्नान करके आया मैं, तिलक लगाया, अभी मंदिर जाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं सोना है, कर सोने में तिलक लगाते हैं। मैंने क्या पता रात में मृत्यु आ जाए, सोते सुबह उठे ही ना। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं पोत के तिलक सोना चाहिए, तिलक को पूरे शरीर पे पोत लो, क्या पता ये अंतिम स्लीप हो वे उठे ही ना, फिर अंतिम यात्रा में तिलक लगाओ तो होगा कम से कम, लेकिन फिर सुबह इतना टाइम मिलेगा नहीं तिलक लगाने। इसलिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को बड़ी निटी ग्रिटी है ना, छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने दान पर चर्चा करी और चाणक्य पंडित के कुछ और दृष्टांत लेके हम समाप्त करेंगे। कहते हैं घर में पति पत्नी के तो कर्तव्य बताए, पति का भी कुछ कर्तव्य है। पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी की पूजा करे, ये नहीं कि ऑल्टर में जगन्नाथ जी को हटा के बिठा के पूजा करे। पूजा का मतलब है सम्मान करना, है सम्मान करना है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा सम्मान होता है वो फिर उस घर में। तो ऐसा मैंने एक दिन एक लेक्चर दे दिया था, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो प्रभु जी माता जी दोनों कुछ प्रॉब्लम में आए, बोले प्रभु डिस्कस करना है। मैं क्या हो गया? बोले प्रभु जी ये जो मेरे प्रभु जी है ना, बस मंदिर में ही प्रभु जी है, घर में जाके तो ना गब्बर सिंह बन जाते हैं। मैंने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, घर में गब्बर सिंह बन जाते हैं, ऐसा मत करिए। कहते हैं प्रभु जी बस आप रहने दीजिए। प्रभु जी ये आपके सामने चूहे जैसा लग रहे हैं ना, ऐसे जैसे खड़के एक्टिंग कर रहे हैं, सही मायने में ना ये शेर है, शेर तो है ना। मैंने कहा प्रभु ऐसे शेर वेर मत बनो घर में ऐसे। कह रहा तो खुद कहता धीरे से प्रभु जी, मैंने कहा कह रहा प्रभु जी हम तो शेर ही हैं, ये तो शेरा वाली बन जाती है घर जाके। अरे बड़ा झंझट है ग्रस्त जीवन में, अगर सदग्रस्त ना होना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए साधारण जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, श्रील प्रभुपाद ने कहा सादा जीवन ऊंचा विचार, ऐसे रखना चाहिए। तो चाणक्य पंडित ने कुछ दृष्टांत दिए, कहते हैं दुष्टा भार्या शठम मित्रम भ्रत्याश्च उत्तरदायका समर्थे चाग्रह वासो मृत्युर एव न संशयम। उस व्यक्ति की मृत्यु है न संशयम, ससर्पे च ग्रह वासो, वो घर में सांपों के साथ रह रहा है। अगर उसकी ये तीन चीजें जीवन में है, पहला दुष्टा भार्या, अगर उसकी पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, रोज खाना नहीं दूंगी है ना, जाओ खा लो, वही मंदिर तुम्हें देता है ना भोजन, जाओ वही खा लो, देख लिया तुम्हारा मैंने भजन कितना है, जाओ वही खा लो, बहुत खिलाने वाले हैं। दुष्टा भार्या, जिसकी पत्नी दुष्टा है, जहां पर कहते हैं शठम मित्रा, मित्र है लेकिन छठ है, बड़ा ही धोखाबाज धोखेबाज करता है, सामने तो मित्रता का व्यवहार, पीछे से आपको क्रिटिसाइज करता है। शठम मित्रम भ्रत्यश्च उत्तरदायका, जो नौकर है, जो आपके नीचे सेवक है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो उठ करके आपको उत्तर देने लग जाए, बस प्रभु एनफ इज एनफ। तो ये भ्रत जिस दिन बोलने लग जाए ना, ये है ससर्प चा ग्रहो वास्ती, हम सर्पों के साथ रह रहे हैं, ये तीन चीजें सर्प है, इसलिए बताया गया इससे अच्छा है मृत्युर एवं न संशयम, ये मृत्यु के समान ही है, जी तो रहा है लेकिन मर मर के जी रहा है। तो लोग बोलते फिर क्या करें ऐसी अवस्था में, तो कहते हैं माता यस्य ग्रह नास्ति भार्या च अप्रविदायिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। व्यक्ति को वन में चले जाना चाहिए है ना, वन में चला जाए, लेकिन ऐसा हो इससे पहले कोशिश करें कि सेटलमेंट हो, खूब प्रयास करना चाहिए, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल प्रयास करो, 25 पे विवाह हुआ 25 साल प्रयास करो कि पत्नी भक्त बन जाए या पत्नी का पति भक्त बन जाए। अगर ना हो, माता यस्य ग्रह नास्ति, जिस घर में माँ ना हो प्यार से बोलने वाली, माँ मर चुकी हो, भार्यम च अप्रविदायनी, भार्या हो लेकिन वो बुरा बोलती हो, अप्रविदायनी हो, गंदी भाषा बोलती हो, आ गए बस यही टाइम मिला, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, पूरा एकदम चल रहा है ना, अरण्यम तेन गंतव्यम, उसको जंगल चले जाना चाहिए, 50 साल की उम्र में तो निश्चय लेना ही चाहिए। हिंदी की गिनती भी कहती है 50 के बाद क्या आती है, 51 बा वन, अब तो जा और चला जाना चाहिए उसको, वही वानप्रस्थ है, वन में प्रस्थान कर देना चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि घर भी वन के समान ही है, माँ नहीं है प्रेम से बोलने वाली, पत्नी बुरा बोलती है, बच्चे सुनते नहीं है। शिला प्रभुपाद जी के साथ यही हुआ, शिला प्रभुपाद जी जो थे उनकी पत्नी को उन्होंने बहुत जीवन प्रयास किया, 54 साल की उम्र तक प्रयास करे कि भक्त बन जाए, नाम था राधा रानी लेकिन नाम के अनुरूप न बन पाए, और उन्हीं के शास्त्रों को बेच दिया। और प्रभुपाद जी ने एक दिन जब घर पे पहुंचे झांसी का प्रचार करके, तो घर में खाने के लिए वड़ा पाव था, श्रील प्रभुपाद ने कहा वड़ा पाव तो दक्षिण भारतीय एक खाना है, हमारे घर तो नहीं बनता है, ये कहां से बन गया? बोले कि माँ बीमार है, पड़ोस के होटल से मंगवाया। तो प्रभुपाद ने कहा भोग भी नहीं लगा होगा? कहा नहीं पिताजी, भोग भी नहीं लग पाया। बच्चे के नाम भी भक्त के नाम है, गोवर्धन, वृंदावन, प्रयागराज, भवतारिणी, नाम देखिए कितने सुंदर सुंदर घर में है, लेकिन इन नाम के बाद, सॉरी भवतारिणी तो उनकी बहन थी, भक्ति लता उनकी पुत्री का नाम, तीन लड़के एक पुत्री, भक्ति लता, गोवर्धन, वृंदावन चंद्र, प्रयागराज, तीन लड़के एक लड़की, चार बच्चे, चारों ने भोग नहीं लगाया क्योंकि माँ के साथ रहते थे, पिताजी प्रचार में झांसी जाते थे, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था 1944 में, लौट कर आए खाने के लिए वड़ा पाव, कह रहे ये तो नहीं खाऊंगा, सांभर वड़ा बनाया था दक्षिण भारतीय, प्रभुपाद जी छोड़ करके चले गए। फिर वापिस आए तो देखते हैं कि जिस गीता को रोज लिखते हैं वो गीता भी उन्होंने बेच दी कबाड़े के बाजार में, गबाड़े के भाव में, और क्या खरीद लिया था, चाय और बिस्कुट खरीद लिया, अरे कबाड़ी के भाव अखबार जाएगा तो चाय बिस्कुट 5-2-4 आना आता होगा, वही ले लिया। शिला प्रभुपाद ने कहा ये चाय है जो तुमको चैतन्य की सेवा में नहीं जाने दे रही, चाय चैतन्य की सेवा में नहीं जाने दे रही। तो उन्होंने कहा क्या हो गया इसमें, चाय में क्या दिक्कत है? बोले आज तुमको चुनना पड़ेगा टी और मी। तो उनकी पत्नी ने कुछ बोला नहीं, चाय को उठाकर मुंह से लगा लिया। शिला प्रभुपाद समझ गए समय आ गया है, अरण्यम तेन गंतव्यम, मुझे अरण्य में जाना चाहिए, क्योंकि यथा अरण्यम तथा गृहम, ये घर भी तो वन के समान है, जहां मेरी कोई पूजा नहीं, मेरी प्रतिष्ठा नहीं, मेरे शास्त्र जो मैंने मेहनत करके 10 सालों में टाइम निकाल निकाल के गीता का ट्रांसलेशन किया। आप में से कितने होंगे जिन्होंने उन गीता को आज तक पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, सोचिए उसको लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी, और उसको कोई चाय के लिए बेच दे कितना दुख होगा। ऐसे समय पर इतनी बात हो जाए ना, अरण्यम तेन गंतव्यम, फिर उसको वन में चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं आज ही थोड़ा झगड़ा हुआ और कल ही वृंदावन चले गए प्रभु जी, वो नहीं, सेटल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। इसलिए हमको कोशिश करें भक्त समाज में भक्ति को प्रधानता दें, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट ना हो, क्षमा युक्त हो, ये गृहस्थ का कर्तव्य है, पति को क्षमा युक्त होना चाहिए। और ज्यादा दाम्पत्य कलह बढ़ जाए तो फिर प्लान करना चाहिए कि अब 50 के बाद वृंदावन जाना है तो उसका भाव उत्पन्न करूं, है ना, दाढ़ी बढ़ाकर वृंदावन चला गया वो वृंदावन नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति पत्नी से दुखी होकर के दाम्पत्यो कलो, दाम्पत्य कला होता है, दाम्पत्य कलो नास्ति तत्र स्वयं श्री जो होती है स्वयं आगतः, जिस घर में दाम्पत्य कलेश नहीं होगा श्री लक्ष्मी उस घर में स्वयं आएगी, टक टक लक्ष्मी पूजा नहीं करनी पड़ेगी दशहरे पर। दाम्पत्य कलो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगतः, लक्ष्मी जी खुद आ जाएगी, टक टक आपके घर में आई हूं, मैंने सुना है आपके घर में दाम्पत्य कलह नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। सुदामा के घर में अपने आप आई, आ गई अपने आप। सुदामा ने कभी मांगा भगवान से मुझे महल दे तो सोने का, पोरबंदर में इतना बड़ा सुदामापुरी बना दिया भगवान ने, क्यों? क्योंकि दाम्पत्य कलह नास्ति। लेकिन कई होते हैं बोलते हैं हम ऋषिकेश चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। एक बार एक चले गए थे बाबा जी बनने के लिए, तो एक गुरु जी बैठे थे, उनके 6 शिष्य बैठे थे क्रम में, तो पहले जाकर इन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी मेरा एक उपाय बताइए, परेशान हो। कहा क्या है बच्चा? कहा पत्नी कंट्रोल में नहीं है, बहुत कलेश करती है, दाम्पत्य कलह नास्ति, अरे दाम्पत्य कलह आस्ति, हर समय दाम्पत्य कलह ही कलह है। कहा अच्छा, लंबी सांस लेके गुरुजी ने कहा, ओ रामदास जो छठे नंबर पे बैठे थे, एक सात नंबर पे दरी और डाल दो, ये भी अब से बाबा बन के ही रहेंगे। तो बोले जितने बैठे हैं सब दाम्पत्य कलह नास्ति, उसके कारण ही बैठे हैं। तो ऐसे साधु बनने का कोई फल नहीं है, ये व्यक्ति विचारशील नहीं है, शास्त्र युक्त नहीं है, युक्त वैरागी नहीं है। तो शास्त्र पढ़कर साधु संघ में युक्त वैरागी होना चाहिए, और उस व्यक्ति को एक ही मनोरथ होना चाहिए, परमार्थ का मनोरथ। परमार्थ का मनोरथ होना चाहिए। भागवत में कहा गया वो व्यक्ति जो जीवित है उसको दूसरों का चिंतन करना चाहिए, चाहे गृहस्थ में ही हो। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये थोड़ी हो गया कि अब हम दूसरों की सोचना छोड़ देंगे, प्रचार नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने पूरा जीवन प्रचार किया, गृहस्थ में रह के प्रचार किया। अर्जुन जो क्या है, भगवान के ग्रस्त भक्त हैं। शिवजी कौन है, भगवान के ग्रस्त भक्त हैं। युधिष्ठिर कौन है, ग्रस्त भक्त हैं। देवहूति माता के पति कर्दम मुनि ग्रस्त भक्त हैं, सब ग्रस्त ही हैं। दक्ष प्रजापति ग्रस्त हैं, ब्रह्मा ग्रस्त हैं, सब लोग सदग्रस्त हैं। लेकिन हम लोग ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों कोने पस्त हैं, क्योंकि हमारे पास कृष्ण नहीं है, भक्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, लॉलियम नहीं है। भक्ति की एक गोल्डन की है, एक चाबी है, स्वर्ण चाबी। जैसे आप लॉकर में जाएं तो एक चाबी आप लगाते हैं और एक दूसरी लॉकर का मैनेजर लगाता है तो लॉकर खुलता है। तो गोल्डन की क्या है, भक्ति की स्वर्ण चाबी क्या है, जिससे सारे ताले खुलते हैं। कौन सी है, एक ताला है कि भक्ति का क्या है, श्रद्धा। एक ताला है हरि नाम जप। एक चाबी है शास्त्र अध्ययन। एक चाबी है शास्त्र श्रवण। ऐसे कई चाबियां हैं, सबने अलग अलग। किसी को कीर्तन में मजा आता है, हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं हमारे प्रभु जी। किसी को कथा में मजा आता है, हम कथा करने बैठ जाते हैं। किसी को कथा ऑर्गेनाइज करने में मजा आता है, प्रभु जी कथा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। किसी को रिकॉर्डिंग में मजा आता है, कोई रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। तो इस प्रकार से अलग 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 भक्त, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करता है, सबका अलग अलग अनुभव, सबकी चाबियां अलग भगवान तक जाने की। लेकिन एक चाबी के बिना कोई भी ताला खुलता नहीं। वो चाबी क्या है, कौन बताएंगे? हाँ जी, हरि नाम तो हो गया, वो दूसरी चाबी है, वो अंग है। भक्ति के 64 अंग हैं, वो सारी चाबियां हैं। एक चाबी है, उस चाबी को लगाने से ही तारे भक्ति का गेट द्वार खुलेगा। हाँ जी, विश्वास और कृपा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही प्रभु जी ने कहा। क्या है, लौल्यम। लौल्यम अपि एक केवलम। जिसके अंदर लौल्यम है ना, उत्साह से जप करे तो उत्साह से, कथा सुने तो उत्साह से, कथा करे तो उत्साह से, नृत्य करे तो उत्साह से, है ना। प्रसाद उत्साह से ना खाए चलेगा, लेकिन वहां हमारा उत्साह अपने आप आ जाता है। तो इस प्रकार से लौल्यम अपि एक केवलम, लौल्यम हो, ये गोल्डन की ऑफ भक्ति है। भक्ति की स्वर्ण चाबी है, जिसमें लौल्यम चला गया उसकी सारे अंग उसका निरादर करने लगेंगे। नाम जब तो करेगा सो जाएगा, सोते सोते नाम जब। अर्जुन जो थे उनसे भगवान प्रसन्न थे। द्वारका में अर्जुन जब सोते थे, रात को सोते सोते हैरान हो गई रुक्मणी देख करके कि कृष्ण ने अर्जुन के पैर पकड़े हुए हैं और अर्जुन के कृष्ण के पैर पकड़े हुए हैं और कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन अर्जुन और अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण। ये झांकी देख करके हैरान हो गए, बोले सोते सोते भी नाम जपते हैं। और गौड़ीय वैष्णव भक्त जो है हमारे कलयुग के, ये जपते जपते सोते हैं। कितना भेद है। एक अर्जुन है जो सोते सोते जपता है, हम जपते जपते सोते हैं। सोचिए हमारे अब लक्ष्य कितना ऊंचा है। इसलिए हमको सोचना है कि भक्ति एकमात्र रास्ता है जो हम सबको भगवान तक ले जा सकती है, परंतु उसके लिए क्या चाहिए, लौल्यम चाहिए। एक श्लोक बोलेंगे भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, सब साथ में बोले उत्साह के साथ, देखें कितना लौल्यम है। ना साधयति माम योगो,
ना साधयति माम योगो,
ना सांख्याम धर्म उधवा,
ना सांख्याम धर्म उधवा,
ना स्वाध्यायश्च तपश्च त्यागो,
ना स्वाध्यायश्च तपश्च त्यागो,
यथा भक्तिर मम अर्जिता,
यथा भक्तिर मम अर्जिता।
भगवान ने कहा 11वें स्कंद 11 14 20 में भगवान कहते हैं न साधयति माम योगो, ना तो ये पार्क में जाकर के प्राणायाम करने से मैं मिलूंगा,
दुकान चल जाएगी पतंजलि की, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। न साध्यति माम योगो, योग से नहीं मिलने वाला। ना सांख्याम धर्म उद्धव है उद्धव, नहीं तो मैं सांख्य योग से प्राप्त होऊंगा। विश्लेषिक अध्ययन करें, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ प्रभु जी हमें तो यहाँ पता था, हमें तो यहाँ पता था, हमारे महाराज जो ऐसे बोलते थे। सांख्ययाम इससे भी नहीं मिलेंगे, फिर कैसे मिलेंगे। न स्वाध्याय, भागवत पुराण गीता गोरखपुर से खरीद करके या इस्कॉन से खरीद के घर में पढ़ेंगे, भक्तों को छोड़ देंगे, अकेले रहेंगे घर में पढ़ेंगे। न स्वाध्याय न तपस्या, कि हम जाएंगे ना और जाकर के वृंदावन में तपस्या करेंगे, जप करेंगे। न तपस्या ना चा, नहीं तपस्या से मिलने वाले हैं, ना ही च त्यागो, नहीं त्याग से मिलेंगे। घर में रहो, ग्रस्त जीवन में रहो, त्यागो भी मत, लेकिन कैसे मिलेंगे। यथा भक्तिर ममा अर्जित, मैं भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। भक्ति में लौल्यम के साथ भक्ति करो, भक्तों के सांग रह के भक्ति करो, उत्साह के साथ भक्ति करो, ग्रस्त आश्रम में रहो, परिवार के साथ मिलकर भक्ति करो, अपनी कृपा सब पर दो ना। अकेले जाकर कुटिया बना के वृंदावन में भक्ति कर भी ली तो क्या भक्ति करी। भक्ति का मतलब है सबको भक्ति प्रदान करना। प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने पूछा, आप ग्रस्त हैं, आपका कोई वरदान मांगना चाहते हैं, नरसिंह भगवान से प्रहलाद कहते हैं, प्रभु एक ही इच्छा है कि मैं जितने असुर है ना कुल में, इन सबको भक्त बनाऊं, उसके बाद धाम में आऊं, वरना मेरे धाम जाने की जल्दी नहीं है। और हम लोग तो दो माला करते हैं, गोलोक धाम गोलोक धाम, अब हम नरक नहीं जा रहे हैं, अब प्रभु जी मिलेंगे गोलोक धाम। और गोलोक धाम के जाने के चक्कर में किसी और जगह चले जाते हैं, राधा कुंड के किनारे कई लोग भक्त बन जाते हैं जाकर के, 64 माला जप करते हैं, और वहां पर जो बैठे महाराज लोग हैं वो तुरंत शुप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत उनको धर्मात्मा बना देते हैं, कहते हैं आप ना भगवान के धाम में गाय हो, गाय है ना, अब आप गाय के भाव में जप करो, मा, 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 मा। गाय के भाव में। किसी को बोले आप ना राधा रानी के मयूर हो, पीहू पीहू। ये नहीं लेना है, जल्दी से सिद्धि प्राप्त हो जाए, कोई मुझे मेरा स्वरूप बता दे, ये जल्दीबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे यतने पालन करी, यतन से पालन करते करते गुरु कृपा से स्वरूप पता चलेगा, और स्वरूप पता चल जाएगा तो कोई व्याख्यान नहीं करेगा। और वहां पर क्या होता है, जब स्वरूप मिल जाता है तो आपस में कंपटीशन होता है, जलन की भावना होती है, आपको क्या बताया महाराज ने, बोले मैं गाय हूँ, आई एम अ गुड गाय। और आप कौन है, बोले मैं मयूर हूँ। अच्छा मयूर, आप तो बढ़िया यार, आपको अच्छा है, आपके पंख लगाएंगे भगवान, हम तो पीछे रह गए। आप कौन, मैं तो ना गोपी हूँ, गोपी। गोपी यार, हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमें गाय बना दिया। महाराज जी महाराज जी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता स्वरूप बदल जाए। बेड़ा घर को ऐसे लोगों का स्वरूप बदलता नहीं है। जिस पल भगवान ने इस अनादिकाल आत्मा को जन्म दिया, उस पल सबका एक निश्चित स्वरूप था, किसी को गाय, किसी को त्रां, किसी को कुछ, किसी को दुगोपी, किसी को सखी, किसी को मंजरी, सब बनाया, ग्वाल वाल सब बनाया भगवान ने। लेकिन जब हम द्वेष करके इच्छा करके नीचे आ गए, तो अब हम अपना वो स्वरूप भूल गए हैं कि हम क्या थे। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ेगा ना, ये भावना नहीं रहेगी मैं गाय हूं, गाय को भी उतना ही आनंद आता है जितना आनंद मयूर को आता है, मयूर को भी उतना आनंद आता है जितना ग्वालबाल को आता है, ग्वालबाल को भी उतना ही आनंद आता है कृष्ण सेवा में जितना गोपी को आता है, गोपियों को भी उतना ही आनंद आता है जितना मंजरियों को आता है। सबका आनंद बराबर है। आनंद रसो भया साथ, भगवान के साथ जाने से आनंद बढ़ता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये नहीं कि मैं गाय यार, मैं तो मेरे नंबर कम आ गए, 10 में से 6 आए, तेरे कितने आए 10 में से, ये ठीक नहीं है। ये इस रूट में लोग चले जाते हैं, इस रूट पे न जाएं। उसके लिए सदग्रस्त के लिए जरूरी है किसी सदगुरु सद वैष्णव के अनुगत होकर के भजन करें, उनसे गाइडेंस लेते रहें, है ना। गाइडेंस का मतलब ही है जी, मतलब गॉड, जी मतलब गॉड, यू मतलब यू, गॉड यू आई, गाइडेंस मतलब जी यू आई डी एन सी डांस, गॉड यू एंड आई डांस टूगेदर विद ग्रस्त आश्रम, ना घर के लोगों के साथ गॉड और मैं, हम दोनों मिलकर के डांस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रेम की बात है उद्धव, इसमें जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक इस पर कृपा मिलेगी। यशोदा माई ने जब कृष्ण को बांध दिया प्रेम की रस्सी से, तो उसके बाद में जब उन्होंने नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, तो नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करने के बाद उन्होंने याचना करी भगवान से, और नलकुबेर और मणिग्रीव ने भगवान की परिक्रमा करी और प्रदक्षिणा करके दोनों कहां चले गए? अपने यक्ष लोक को। तो आचार्य से लोग प्रश्न पूछते हैं, बड़े पागल थे नलकुबेर और मणिग्रीव ने, क्या भगवान की रस्सी नहीं खोलना चाहा? दिवाली का दिन है, सुबह 5:28 से 8:10 में ये लीला हुई, 3 साल 2 महीने के भगवान थे, पूरा दिन बंधे रहे भगवान। और जब भगवान ने नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया, तो नलकुबेर मणिग्रीव के मन में नहीं आया कि लाओ भगवान की रस्सी खोल दे, इन्होंने हमारा उद्धार किया है, हमारी रस्सी खोली तो हम भी खोल दे, क्या ऐसा विचार नहीं किया? परिक्रमा करके चले गए, बड़े गलत थे। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रयास किया खोलने का, खुली नहीं उनसे रस्सी। ग्वाल बालों ने भी प्रयास किया, अरे लाला बंधा हुआ है, लाओ हम खोल देते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं खोली। गोपियों ने कहा हम खोल दें, उनसे भी नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्यों नहीं खुल रही है रस्सी? बांधी भगवान ने थी, ऐसे करके बांधी तो ऐसे झट से गांठ खोल देते, खुली क्यों नहीं? भगवान नहीं चाहते थे? भगवान तो चाहते, भगवान कह रहे बचाओ बचाओ निकालो भगवान कह रहे हैं निकालो मुझे। आप देखिए, दो पेड़ है यमला अर्जुन, उसमें फंस करके वो पत्थर का उखल टूट सकता था, वो नहीं टूटा। रस्सी टूट सकती थी, वो नहीं टूटी। रस्सी खुली नहीं रही किसी से, क्यों नहीं खुल रही है? हाँ, क्योंकि ये रस्सी यशोदा माई ने बांधी है। यशोदा माई का जो प्रेम है उसका बराबरी कोई नहीं कर पा रहा था। यशोदा माई के द्वारा बांधी गई रस्सी थी, इसीलिए सब लोग भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? उस रस्सी को भी हम प्रणाम करते हैं जिस रस्सी से भगवान को बांधा गया, वो दीप्तिमान रस्सी, वो प्रेम पुंज की रस्सी, वो प्रेम रज्जु, उससे जिससे भगवान बंध जाते हैं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, जैसे यशोदा माई ने उखल से आपको बांधा था, हम भी अपने हृदय रूपी उखल से आपको बांध लें, है ना? ये होना चाहिए। तो ये भगवान का भाव रहेगा ना, इसीलिए तो कहा गया कुबेरात्म जो भक्तुर्मुत्वाम यदत्वाम त्वयो मोचितो भक्ति भाजो कृतोचा तथा प्रेम भक्ति स्वकम मे प्रयच्छम न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेहा नमस्ते स्तु दामने स्फुदीप्ति दामने त्वदीयो दरायाथ विश्वास दामने नमो राधिकाए त्वदीयो प्रियाए नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं। आपकी अनंत लीलाएं हैं प्रभु, लेकिन जिस प्रकार राधा रानी से आप प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से आप यशोदा माई की उखल से बन गए हैं, उस रस्सी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। ये भाव ग्रस्त जीवन में रहे तो हम सदग्रस्त हैं, वरना क्या है? चारों कोने पस्त हैं, त्रस्त हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।